आज का प्रातः क्लास है 10 11 1966 गुरुवार के दिन भी रिकॉर्ड चला था। ओम नमो शिवाय कि तुमात सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई और आधार नहीं तुम ही उसे एक तुम ही एक सहारे हो। ओम शांति। बच्चे जब यहाँ बैठे हैं तो रचयिता को भी याद करते हैं और रचना के आदि मध्य अंत अथवा सुदर्शन चक्र को भी याद करते हैं। क्योंकि बाप ने नालिश तो दी है बच्चों को कि सुदर्शन चक्रधारी बनो, ये है तुम बच्चों की है ऑब्जेक्ट, ब्राह्मणों की है ऑब्जेक्ट है क्या कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्व माने आत्मा, दर्शन माने 84 जन्मों का दर्शन, और 84 जन्मों के चक्र में हमारी आत्मा का विशेष पार्ट क्या है, नर से नारायण या नारी से लक्ष्मी, तो ये हम ब्रह्मा वत्सों की एम ऑब्जेक्ट है, ये देवताओं की एम ऑब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि सतयुग के पहले जन्म से ही जो 16 कला संपूर्ण देवताएं बनेंगे वो तो सब नीची कला में उतरते जावेंगे और हमारी संगम युग में तो चढ़ती कला है, इसलिए हमारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनना या चक्र में मन 84 के चक्र में हम उल्टी सीढ़ी चढ़ते हैं, तो चढ़ते चढ़ते ऊंचे से ऊंची फर्स्ट जन्म की सीढ़ी और उससे भी ऊंची सीढ़ी स्वर्णिम संगम युग में हम डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं। ये हम ब्राह्मणों का उद्देश्य है, देवताओं का उद्देश्य नहीं है कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। देवात्माएं तो आत्मिक स्थिति में टिकेंगी, ऊपर से लेकर के मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन और फिर स्थूल वतन के चक्र को, 84 जन्मों के चक्र को बुद्धि में रखो। आत्मा को कहते हैं अपनी बुद्धि में रखो। दूसरा सारा कचरा बुद्धि से निकाल दो, भक्ति मार्ग का कचरा वो सब बुद्धि से निकाल दो, क्योंकि और तो सभी जगह में भक्ति मार्ग में जो सुनाने वाले हैं उनकी भी बुद्धि में ये शास्त्रों का भक्ति का वगैरह वगैरह कचरा भरा रहता है। तो इन शास्त्रों के कचड़े को बाप कचड़ा कहते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम देखते हो कि सारा भारत ही कचड़ा बन गया है। भारत क्या था, सो तो तुम बच्चे जानते हो ना, क्या था? बा माने ज्ञान की रोशनी और रत माने लगा रहने वाला। सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला था और अभी कलयुग के अंत में आकर के क्या बन गया, बुद्धि में क्या भर गया? सारी मनुष्य सृष्टि का बीज जो सतयुग के आदि में हीरा था, सारी दुनिया ने जाना था उसे हीरो पाटधारी के रूप में, और अभी कलयुग के अंत में उसी मनोबुद्धि रूपी आत्मा में देवान का कचड़ा भर गया। इन बातों को दुनिया नहीं जानती है कि सृष्टि के आदि में सत्व प्रधान समय में भारत क्या था, वो भूल गए हैं। क्योंकि शास्त्रों में कचरा भरने से भक्ति मार्ग का कचरा, मनुष्यों के द्वारा लिखे हुए शास्त्र, मनुष्य तो विकारी होते हैं, विकारी बुद्धियों के द्वारा जो भी शास्त्र लिखे गए उन्हें विकारी बातें भर गई, दुर्गति हो गई, दुर्गति मार्ग का कचरा। तो वो शास्त्र लिखने वाले उन लक्ष्मी नारायण को बिल्कुल भूल गए हैं कि वो मनुष्य से देवता कैसे बने थे, जिस मनुष्य के मन में तामसी संकल्प विकल्प ही चलती रहती। इतना कचरा भर गया कि सतयुग को लाखों वर्ष दे दिया। अरे मनुष्य के पास जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री बताती है, द्वैतवाद का कचरा है, जिस द्वैतवाद से द्वापर शुरू हुआ, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें, दो से चार, चार से आठ, ये भेदभाव बढ़ता ही चला गया। तो अज्ञानता आ गई ना, अज्ञान का अंधकार भर गया। अंधकार को रात कहते हैं, जिस रात में सब मनुष्य भक्ति मार्ग की ठोकरें खाते रहते हैं, बुद्धि भागती रहती है, असलियत कहीं मिलती नहीं। न अपने बारे में, न भगवान के बारे में सच्चाई कोई को प्राप्त नहीं होती। बुद्धि भटकती रहती है, जैसे रात में लोग ठोकरें खाते रहते हैं। तो रात का समय जब ये दो युगों का है, द्वैतवादी द्वापर युग से लेकर के कलह क्लेश के कलह युग तक का, जिसकी हिस्ट्री 2500 वर्ष की मिलती है, इस 2500 वर्ष में ये द्वैतवादी धर्म पिताएं देहधारी धर्म गुरु के रूप में आए, मनुष्य गुरुओं के रूप में आए, जिन्होंने द्वैतवाद फैलाकर सारी दुनिया को नीचे गिरा दिया, खुद भी नीचे गिरते गए, अपने फॉलोअर्स को भी नीचे गिराया। तो ये अंधकार की दुनिया हुई। ढाई हजार वर्ष का अंधकार है, और ये तो किसी को मालूम ही नहीं है कि इसी दुनिया में सच्चाई का उजाला भी था। शास्त्रों में बोला भी है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। दिन में रोशनी होती है, रात में अंधकार होता है। तो आधी रात और आधा दिन, 2500 वर्ष की रात और 2500 वर्ष का दिन होना चाहिए, टोटल मिलाकर के 5000 वर्ष हुए। जो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कही जाती है, परंतु उन्होंने तो शास्त्रों में लाखों वर्ष दे दिए। कुछ भी उन शास्त्रकारों की बुद्धि में नहीं रहता है, लाखों वर्ष और फलाना फलाना वर्ष। तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहता है कि बरोबर बाबा और पीछे है सूक्ष्म बदन, बाबा किसे कहा जाता है, साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। निराकार है निराकार आत्माओं का बाप, जो सदा निराकार है, और साकार है सारी साकार मनुष्य सृष्टि का बाप। बीज को बाप कहा जाता है, बीज कभी लोप नहीं होता। इस सृष्टि में वो मनुष्य सृष्टि का एक बीज ही है जिसका कभी लोप नहीं होता। जैसे गीता में कहा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, सत्य का कभी लोप नहीं होता है। तो इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं, उन सब का जो एक बीज है उसका इस सृष्टि पर कभी लोप नहीं होता, वो इस सृष्टि पर सदा कायम है। इसीलिए ब्रह्मा के मुख से भगवान ने बोला, इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज है नहीं, सदा काल का कायम सिर्फ एक शिव बाबा ही है। शिव बाबा क्या? नहीं तो शिव तो बाप है या बाबा है? शिव तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, फिर बाबा कैसे कह दिया? साकार निराकार का मेल, तो निराकार का मेल शिव वो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, जो शिव बाप है वो तो इस सृष्टि पर सदा कायम होता ही नहीं। हाँ, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो योग बल के आधार पर संपूर्ण 100% ज्योतिबिंदु आत्मा बन जाता है। जिस ज्योतिबिंदु आत्मा की यादगार सोमनाथ मंदिर में दिखाई गई है, क्या? लाल गोलाकार लिंग और उसमें बीच में हीरा दिखाया गया, वो हीरा किसकी यादगार है? है शिव तो बाप है, शिव जो बाप है आत्माओं का वो तो आत्मलोक का वासी है, साकार सृष्टि का सदाकाल वासी है ही नहीं। तो साकार सृष्टि में जो शिव बाबा है वो सदाकाल कहाँ का वासी है? कहाँ का वासी है? साकार सृष्टि का वासी है। तो वो निराकार आत्माओं का बाप जो निराकारी लोक का सदा रहने वाला है, सदा शिव कहा जाता है, वो सदा शिव है। सृष्टि पर जब आता है तो विरुद्ध लेता है, मैं तुम बच्चों को नंबर वार आप समान बना करके जाऊंगा। तो कोई बच्चा तो शिव समान 100% निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनता होगा ना? नहीं बनता होगा? बनता है। जो बनता है उसका नाम शिव के साथ सदा जोड़ा जाता है। क्या कहते हैं? शिव शंकर बोलेना। तो देखो साबित हो गया कि शिव इस सृष्टि का सदा कालवासी नहीं है, साकार सृष्टि का। इस सृष्टि का सदा कालवासी वो है आत्मा जो योग बल से अपन को शिव समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बना लेती है। वो आत्मा निराकारी भी और साकारी भी, माने वही आत्मा है जिसके लिए गीता में बोला है अव्यक्त मूर्तिना। क्या? मूर्ति भी है माना साकार भी है और अव्यक्त भी है। अव्यक्त माने जो आंखों से दिखाई देने योग्य नहीं है, मन संपूर्ण आत्मा है, आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, तो उसका यादगार शिव के मंदिरों में दिखाया जाता है। उन शिव के मंदिरों में से जो एकदम सात्विक स्टेज वाला मंदिर था वो कौन सा था? सोमनाथ मंदिर। उस सोमनाथ मंदिर में वो लिंग भी दिखाया और वो निराकार आत्मा भी हीरे के रूप में दिखाई गई। वो हीरे के रूप में आत्मा हीरो पार्टधारी है, शिव तो सदैव जीरो है, वो कभी हीरो बनता ही नहीं। वो कहता भी है मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ। तो सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग दिखाया गया और उस लिंग में हीरा दिखाया गया, वो आत्माओं के बाप शिव की यादगार है क्या? शिव की यादगार नहीं है, क्योंकि शिव ने तो स्पष्ट बोल दिया ब्रह्मा के मुख से। क्या क्या बोल दिया? मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ। तो जो शिवलिंग जो पूजा जाता है और सोमनाथ मंदिर में जिसकी राजा विक्रमादित्य ने पूजा की थी, वो पूज्य शिव बाप है या कोई और आत्मा है? शिव बाप तो पूज्य बनता ही नहीं। तो जिसको पूज्य बनाता है वो साकार, वो पूज्य बनता है और पुजारी भी बनता है। इतने मंदिर हैं भारतवर्ष में, दुनिया में भी खुदाइयों में सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली हैं। मना उसका प्रभाव इस दुनिया में सार्वभौम रहा है, माना 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं ने उस स्वरूप को जाना है, पहचाना है और याद किया है। इसलिए गीता में आया है मन मना भव, क्या मेरे मन में समा जा। ये शिव कहेगा मेरे मन में समा जा। शिव को मन है? है है नहीं? तो कौन कहता है मेरे मन में समा जा? है जिसमें प्रवेश करता है वो कहता है मेरे मन में समा जा। प्रवेश तो तमो प्रधान मनुष्य में करता है, पतितम कामी कांटे में करता है। क्या वो कहता है मेरे मन में समा जा? अरे जो तमो प्रधान कामी कहता है उसकी बुद्धि में विकारी संकल्प चलेगा या निर्विकारी संकल्प चलेगा? है विकारी संकल्प चलेगा, वो थोड़े ही कह सकता है मेरे मन में समा जा। हाँ वो ही शख्सियत बाप को याद करते करते, सुप्रीम सोल फादर को याद करते करते बाप समान जब बन जाता है तो वो कह सकता है मत मना भव मेरे मन में समा जा। क्यों? क्योंकि सदा काल उसके मन में क्या है? ज्योतिबिंदु शिव, निराकार शिव, दूसरा कोई संकल्प है ही नहीं। वो तो निसंकल्प हो गया, इच्छा मात्रम अविद्या है, है? इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा नहीं। मैं आत्मा ज्योतिबिंदु, मेरा बाप ज्योतिबिंदु, दोनों एक जैसे। बिंदु बिंदु एक जैसे उस स्टेज में समाई हुई आत्मा कह सकती है, संपन्न स्टेज में मेरे मन में समा जा। कौन समा जा? वो सब समा जाए 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जो मुक्ति और जीवन मुक्ति पाते हैं। 500 करोड़ आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति पाएंगी या नहीं है? नहीं पाएंगी, सब पाएंगी। तो सभी आत्माएं जो भी कलयुग के अंत में 500-700 करोड़ हैं, जब महामृत्यु का समय होगा, महाविनाश होगा, उस समय तक कोई भी धर्म की आत्मा हो, नास्तिक से नास्तिक मनुष्य आत्मा क्यों न हो, उसकी बुद्धि में भी, उनके मन बुद्धि में भी कौन समाया हुआ होगा? साकार या निराकार? साकार को याद करना सहज या निराकार को याद करना सहज? साकार को याद करना सहज। इसीलिए शिव बाबा ने साक्षात्कार में जो चित्र बनवाए शुरू शुरुआत में, उनमें झाड़ का चित्र है, उसमें सबसे ऊपर देखो कौन बैठा हुआ है, नग्न अवस्था में बैठा हुआ है। माना देह की स्मृति नहीं है, देह की इंद्रियों की स्मृति भी नहीं है, इसलिए वो लिंग रूप में दिखाया जाता है मंदिर में। लिंग में इंद्रियां होती ही नहीं, हाथ पांव नाक आंख कान होते हैं, नहीं होते। इंद्रियों की स्मृति ही नहीं है, इंद्रियों से कोई प्रकार का सुख लेता ही नहीं है, वो तो अतीन्द्रिय सुख में रमण करता है। और जो अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोप गोपियों से पूछो। सिर्फ गोप गोपियों से ही क्यों पूछो, औरों से क्यों नहीं पूछो? 33 करोड़ देवताओं से क्यों नहीं पूछो? 9 लाख जो चैतन्य सितारे हैं इस धरती के, उनसे क्यों नहीं पूछो कि वो 9 लाख सितारे सब प्रजा वर्ग में आने वाले हैं, वो राजयोग सीखने वाले नहीं हैं, भगवान से डायरेक्ट राजयोग सीखने वाले सिर्फ 16,108 आत्माएं हैं जो राज परिवार में आती हैं जन्म जन्मांतर। कैसे आती है? तरीका क्या है? तरीका है कि वो गोप गोपियां माने गुप्त संबंध जोड़ने वाले एक बाप से सब प्रकार के संबंध जोड़ते हैं, अनेकों से संबंध नहीं जोड़ते, और संबंध भी गुप्त रूप में जोड़ते हैं। गुप्त दान महाकल्याण, ऐसे नहीं कि जो संबंध जोड़े वो दुनिया में बखान करते फिरे कि हमने भगवान बाप के साथ ऐसे ऐसे ये कर्म इंद्रियों से संबंध जोड़े, नहीं। तन अर्पण करना, धन अर्पण करना, ये गुप्त रूप में ज्यादा पावर रखता है या प्रत्यक्ष रूप में ज्यादा पावर होती है? एक हाथ लेने वाला बुद्ध रूपी और दूसरा हाथ देने वाला, तीसरे को पता भी नहीं चले, उसको कहते हैं गुप्त दान महाकल्याण। तो ऐसी आत्माएं 16,000 निकलती हैं जो राज योग सीखती हैं, जिस योग में राज भरा हुआ है। क्या राज भरा हुआ है। ये राज की बातें कृष्ण बच्चा सीखेगा या सिखाएगा, या जो बड़ा होगा सगीर होगा वो सिखाएगा। छोटा बच्चा राज की बातें जानता है या बड़े होने पर पता चलता है? बड़े होने पर पता चलता है। तो ये तो गीता मनुष्यों ने खंडित की हुई है, जो समझ लिया है कि कृष्ण गीता का भगवान है, जो कृष्ण बच्चे के रूप में भारतवर्ष में पूजा जाता है, बड़े रूप में भारत में पूजा नहीं जाता। अब सवाल ये है, कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण कृष्ण किसका बच्चा है? 16 कला संपूर्ण तो भगवान बनाता है, नरसे नारायण भगवान बनाता है, कोई मनुष्य गुरु तो बनाता नहीं। 16 कला संपूर्ण बनाने वाला रचयिता है और बनने वाला रचना है। रचना बड़ी या रचयिता बड़ा? रचयिता बड़ा। तो जो कृष्ण को गाते हैं कीर्तन में, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, कृष्ण भी कहते हैं नारायण भी कहते हैं, मन वही आत्मा कृष्ण का पार्ट भी बजाती है, सतयुग में वही आत्मा नारायण का भी पार्ट बजाती है। तो वो कृष्ण कहो नारायण कहो, वो उतरती कला का नारायण है या चढ़ती कला का नारायण है? सतयुग के आदि में जो पहला पत्ता बनता है वो उतरती कला में जाता है या चढ़ती कला में जाता है? जन्म जन्मांतर उतरती कला में जाता है। तो उतरती कला का गायन होना चाहिए है? नहीं होना चाहिए, लेकिन मनुष्य तो विकारी बुद्धि है, उनको तो समझ में ही नहीं आता कि हम क्या करते हैं क्या बोलते हैं। वास्तव में भगवान ही आकर के रहस्य बताता है कि उन राधा कृष्ण को जो 16 कला संपूर्ण सतयुग के आदि में थे, जिनका नारायण का सतयुग के आदि में राज्य था, उनको बनाने वाला जो रचयिता है वो इस सृष्टि में योग बल के आधार पर रचयिता हुआ। शिव निराकार है या साकार है? शिव निराकार है। निराकार है तो आत्माओं को पहचान देगा। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं, उनकी आत्मा को जन्म देगा पहचान देगा या देह का जन्म देगा? आत्मा को पहचान देते हैं। वो निराकार निराकार आत्माओं का परिचय देता है। निराकार बाप है ना निराकार आत्माओं का? निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए? निराकार का वर्षा है निराकार ज्ञान। क्या है? ज्ञान निराकार उसका वर्षा है। तो क्या वर्षा देगा? धनवान बाप होगा तो धन का वर्षा देगा है? जमींदार बाप होगा तो जमीन जायदाद का वर्षा देगा। ये निराकार बाप जो अखूट धन संपत्ति ज्ञान की धन संपत्ति का आधार है, जिसकी ज्ञान की धन संपत्ति कभी ठुकूटती ही नहीं, जिसके लिए गायन है उसमें से पूरा ही ज्ञान निकाल लो तो भी पूरा ही बचता है, कभी खूटता ही खूटता ही। वो बाप कहते हैं बच्चे मेरे पास जो भी ज्ञान था मैंने तुम्हें सारा दे दिया, अब तुम्हारी बुद्ध रूपी पात्र कोई छोटा कोई बड़ा, जैसा जैसा बुद्ध रूपी पात्र वैसा वैसा तुम्हारे अंदर वो ज्ञान का भंडार बैठता है कि सबकी बुद्धि में एक जैसा बैठता है? एक जैसा तो बैठ ही नहीं सकता। तो तुम बच्चों में जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हो, उनमें कोई बड़ा बच्चा होगा या नहीं होगा? शिव बाप आत्माओं का बाप, खास करके मनुष्य आत्माओं का बाप, क्योंकि मनुष्यों को आके ज्ञान सुनाता है या जानवरों को सुनाता है? पशु पक्षियों को सुनाता है। वर्षा किसको देता है? मनुष्यों को। तो उन मनुष्यों के बीच में कोई बड़ा भाई होगा या नहीं होगा? तो भगवान ने आकर के ये परंपरा चलाई क्या, कि जो बड़ा बच्चा होता है उसको बाप वर्षा देता है राजाई का। हिस्ट्री में जितने भी राजाएं हुए, उन्होंने अपनी राजाई का वर्षा किसको दिया? मध्यम बच्चों को नहीं दिया, छोटे बच्चों को नहीं दिया, बड़े बच्चों को दिया। ये परंपरा किसने चलाई? भगवान ने आकर चलाई। इसलिए गीता में लिखा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस, मेरे रास्ते का ही मनुष्य सब प्रकार से अनुगमन करते हैं। क्या? जैसा मैंने रास्ता चलाया है उसी रास्ते पर सारी दुनिया चलती है आगे पीछे। तो देखो, शिव हुआ हम मनुष्य आत्माओं का बाप। क्या हुआ? मनुष्य आत्माओं का बाप। और शिव का बड़ा बच्चा कौन हुआ? मनुष्य सृष्टि का बाप आदम, जिसे और धर्मों में आदम, एडम, आदिनाथ कहा जाता है, सृष्टि का पहला पुरुष, वो बड़ा बच्चा हुआ। बड़े बच्चे को क्या कहेंगे? दादा कहेंगे ना? क्या कहेंगे? दादा। तो अगर हम आत्म की स्थिति में हैं, आत्मा बने हैं, तो हमारा बाप दादा कौन हुआ? शिव बाप बाबा नहीं, शिव बाप बाप हुआ। और मनुष्य सृष्टि का बाप दादा हुआ। अगर हम आत्म की स्थिति में रहते हैं तो ऐसा समझेंगे, अगर देवान में रहते हैं, देवान वालों की औलाद बने हैं, सिर्फ ब्रह्मा की औलाद बने हैं, तो ब्रह्मा देहधारी या निराकारी? देहधारी। जैसे और धर्म पिताएं देहधारी हैं, वैसे ब्रह्मा भी देहधारी। तो देह अभिमान में है तो हम कहेंगे बाप हमारा राम वाली आत्मा, जिसमें यज्ञ के आज से ही शिव बाप ने प्रवेश किया। और दादा ब्रह्मा बाबा, शशि का पहला पत्ता। अगर देवान में है तो, लेकिन देवान में देह धारण करने वाले सतयुग के आदि से होते हैं या संगम में बनते हैं? बनते हैं देवान वाले। हाँ, देवान वाले सतयुग के आदि से देवताएं बनते हैं। कोई कहे हैं देवताओं में भी देवान होता है क्या? अगर नहीं होता है तो लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे देखो, राधा कृष्ण खड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को आंखों से देख रहे हैं ना। दृष्टि आंखों का अंग नहीं है, वो देह का अंग नहीं है? देह का अंग है ना, देह का अंग है, देह का संग करते हैं, देह के अंग का संग करते हैं, तो नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे? नीचे गिरते। जो भी देवताएं हैं सब नीचे गिरते हैं, लेकिन उनका जो जन्मदाता है, किनका? जन्मदाता देव आत्माओं का वो ही एक ऐसा है जो संगम युग में लक्ष्मी नारायण के रूप में दिखाया गया है। लक्ष्मी नारायण के चारों ओर प्रकाश का वलय है, क्या प्रकाश का वलय है माने ज्ञान प्रकाश की दुनिया में रहते हैं, देवान की दुनिया में नहीं रहते। वो वाइब्रेशन का सुख लेते हैं, वाइब्रेशन का सुख देते हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण को ध्यान से देखो, राधा कृष्ण की तरह आंखों से एक दूसरे को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? है? आंखों से देख रहे हैं, ध्यान से देखो। है? लक्ष्मी नारायण की बात की, देख रहे हैं? इसका मतलब हुआ कि वो देह की कोई भी इंद्रियों का, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, उनका सुख नहीं ले रहे हैं। कौन सा सुख ले रहे हैं? है? अतिंद्रिय सुख ले रहे हैं, इंद्रियों से अतीत का सुख लेने वाले। तो जो अतीत का सुख लेने वाला होगा वो ही दूसरों को अतीत का सुख दे सकता है। इंद्रिया अतीत सुख, शिव को तो इंद्रिया है ही नहीं, उनकी तो बात ही नहीं है। इंद्रियातीत सुख लेना और देना ये किसका दायित्व है? है? जिसको इंद्रियां हैं, इंद्रियां होते हुए भी इंद्रियातीत सुख लेने वाला बने, इंद्रियों से परे का सुख लेने वाला बने, वाइब्रेशन का सुख लेने वाला बने। तो वाइब्रेशन का सुख लेते हैं और देते हैं, उस सुख से उन लक्ष्मी नारायण से जो नर से नारायण बनते हैं, राधा कृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्माओं का 16 कला संपूर्ण का जन्म होता है। तो बताओ इस सृष्टि में ऊंचे से ऊंचा करतार कौन हुआ? करतार माने करने वाला, सृष्टि करने वाला ऊंचे से ऊंचा करतार कौन हुआ? सृष्टि के जो पहले पत्ते हैं राधा कृष्ण, वो तो ऊंचे से ऊंचे नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि वो तो नीचे गिरने वाले हैं या ऊंचे चढ़ने वाले हैं? वो नीचे गिरते हैं, वो ऊंचे से ऊंचे करतार नहीं हो सकते। उनको जिन्होंने जन्म दिया, क्या उनको जिन्होंने जन्म दिया, वो जन्मदाता ऊंचे से ऊंचा करता, ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है। क्या? ऊंचे से ऊंचा भगवंत। ऊंचा और नीचा निराकारी दुनिया की बात है या साकारी दुनिया की बात है? साकारी दुनिया की बात है। साकारी दुनिया में ऊंचे से ऊंचे भी होते हैं और नीचे से नीचे भी होते हैं। तो देखो तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहता है कि बरोबर बाबा और पीछे बनता है सूक्ष्म बतन, क्या बाबा जो साकार भी है और अव्यक्त भी है। अव्यक्त दो रूपों में होता है, एक तो सूक्ष्म शरीर के आधार पर और दूसरा सूक्ष्म शरीर भी नहीं, सूक्ष्म शरीर भी छूट जाए और ज्योति बिंदु आत्मा बन जाए, वो भी अव्यक्त कही जाती है, इन आंखों से देखने में नहीं आती है। तो सबसे पहले है बाबा और पीछे है सूक्ष्म बतन। सूक्ष्म बतन माने सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं। जब विनाश होगा, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा भारी विनाश होता है भूकंप से, ढेर के ढेर अकाली मौत होंगी, तो अकाली मौत धारण करने वाले सूक्ष्म शरीर लेंगे या नहीं लेंगे? हैं? सूक्ष्म शरीर धारण करेंगे तो उनको सूक्ष्म बतन चाहिए, तो वो रहा सूक्ष्म बतन। स्थूल शरीर छोड़ते जाएंगे और सूक्ष्म बतन में पहुंचते जाएंगे। पहले बाबा, क्योंकि बाबा को तो इस सृष्टि में अंत तक रहना ही है या नहीं रहना है, रहना है। उसको तो गाया ही हुआ है, कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता, ऐसा महाकाल सारी दुनिया को खा जाएगा, अपने में समा जाएगा, लेकिन उसको कोई खा नहीं सकता, ऐसा महाकाल वो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है। महाविनाश के समय जब सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का अंत होगा, आग लगेगी, तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं नंबर वार अपना शरीर छोड़ छोड़ करके बिंदु बिंदु आत्माएं दिखाई गई हैं, किस तरफ जा रही हैं? है शंकर की ओर जा रही है, जो सूक्ष्म स्टेज में भी है, अव्यक्त स्टेज में भी है, स्थूल शरीर नहीं दिखाया गया है और साकार भी है। ऐसे नहीं है कि साकार शरीर नहीं है, साकार शरीर तो है, लेकिन साकार शरीर और साकार शरीर की इंद्रियों का भान भान नहीं है, इसलिए लिंग रूप में दिखाया जाता है। मंदिरों में शिवलिंग कि जो भी मंदिर बने हुए हैं, किस रूप में दिखाया गया? लिंग रूप में। लिंग साकार भी है, बड़ा रूप भी है, और उसमें ज्योति बिंदु निराकार है। तो निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों का मेल है, परंतु वो साकार शरीर इंद्रियों की याद में नहीं है, इंद्रियों की याद से परे है, देवान से परे है। इसलिए बताया कि बाबा फिर हमको यहाँ बैठ करके सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनाया, क्या सारी मनुष्य आत्माएं सूक्ष्म वतनवासी हो गई, सूक्ष्म वतन से सूक्ष्म शरीर त्याग करके आत्मिक स्टेज धारण करेंगी, बिंदु बनेंगी, और बिंदु बनने के बाद मन मना भव, मेरे मन में समा जा, तो उस मन में ज्योति बिंदु है, उस ज्योति बिंदु में समा जाएंगे। नहीं तो क्या होता है, हर मनुष्य आत्मा के अंदर अलग अलग संकल्प हैं, एक ही संकल्प है, अलग अलग संकल्प, अलग अलग वाइब्रेशन है। जब सारी मनुष्य आत्माएं बिंदु में समा जाएंगी तो सबका संकल्प एक में तिरोहित हो गया या अलग अलग संकल्प रहेंगे? है एक में तिरोहित हो गया, तो वो एक ही है जिसमें महाविनाश के समय सारी जड़ जंगम दुनिया, जड़ पृथ्वी जलवायु अग्नि जिनसे शरीर बनता है, और जंगम माना चैतन्य आत्माएं, पशु पक्षी प्राणी सब की आत्माएं, आत्माएं भी और पांच तत्वों का शरीर भी उस एक ज्योति बिंदु में समा जाएगा। क्या एक में ही समा जाएंगे और एक में से ही वापस फिर नई सृष्टि में आएंगे। तो बोला बाबा फिर हमको यहाँ बैठ करके सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनाया, यहाँ मैंने इस सृष्टि में बैठ करके, क्या कहाँ ले जाएंगे? है अरे पहले शांति धाम में ले जाएंगे, फिर सुख धाम में ले जाएंगे, सुखधाम में ले तब जाएगा जब खुद सुखधाम का वासी हो। खुद सुखधाम का वासी नहीं है तो सुखधाम में कैसे ले जाएगा? ले जाएगा है? बाप मकान बनाता है, बच्चों को मकान देता है, तो खुद भी मकान में रहता है या नहीं रहता है? रहता है। तो बताया ये क्रम है कि बीज से ही सारा मनुष्य सस्य रूपी झाड़ निकलता है और अंत में उसी बीज में सारा मनुष्य सस्य रूपी झाड़ समा जाता है। इसलिए गीता में लिखा है न अहम तेषु ते मैं, क्या मैं जो इस सृष्टि का बीज रूप हूँ, मैं उन जड़ों में, तनों में, टहनियों में, पत्तों में, फूलों में, फलों में समाया हुआ नहीं हूँ, लेकिन वो सब मेरे बीज के अंदर समाये हुए हैं। ऐसे गीता में भी लिखा हुआ है। इसे साबित होता है कि एक ही बीज से सारा मनुष्य सृष्टि रूपी संसार निकलता है और एक ही बीज में समा जाता है। अच्छा, फिर ब्रह्मा के मुख से जो मुरली आई है भगवान की, उसमें तो लिखा है कि तुम सब आत्माएं परम धाम की रहने वाली हो। कहाँ की रहने वाली हो? परम धाम की रहने वाली हो। परम धाम से इस सृष्टि पर आती हो, टाइम टू टाइम जन्म लेती हो, मनुष्य का जन्म लेती हो। महाविनाश के टाइम सभी मनुष्य आत्माएं अपना शरीर छोड़ करके कहाँ जावेंगी? है परम धाम वापस जावेंगी। तो ये बीच में मनुष्य सृष्टि के झाड़ के ऊपर ये जो बैठा हुआ है, ये क्यों दिखा दिया कि इसे मैं समा जा दिया? तो बोला है तुम बच्चे परम धाम को भी सृष्टि पर उतार लेंगे। क्या बोला? तुम बच्चे परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे। इसका मतलब जो उतारने वाले बच्चे हैं उनमें अव्वल नंबर कोई बच्चा होगा या नहीं होगा? जो होगा वो पहले पहले परम धाम को इस सृष्टि पर अपने अंदर समाएगा। जो ऊंचे से ऊंचा धाम कहा जाता है, इसीलिए मुरली में बोला भगवान बाप ने ब्रह्मा के द्वारा, अपने घर को याद करो, बाप को याद करो और स्वर्ग को याद करो। अब बताओ तीन तीन को याद करें कि एक एक को याद करें? क्यों, ये तो तीन बातें हो गई। हाँ, जब परम धाम को तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेते हो, उनमें जो अव्वल नंबर बच्चा परम धाम को इस सृष्टि पर उतारता है, उसके अंदर स्वतः ही वो परम धाम समा गया। उस परम धाम में जहां से सारी मनुष्य आत्माएं निकलती है, जैसे वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है, सारी वसुधा हमारा कुटुंब परिवार है। बताओ ये जो परिवार है, माँ है, छोटे बड़े बच्चे हैं, भाई हैं, बहनें हैं, ये सब परिवार कहाँ से आया? कोई से पूछते हैं परिवार के भांतियों से, तुमको जन्म किसने दिया? तो अज्ञानी बच्चे होंगे तो कहेंगे माता ने जन्म दिया। क्या कहेंगे? किसने जन्म दिया? माता ने जन्म दिया। बच्चे बड़े होंगे फिर उनसे पूछा जाए माता ने तुम कहां से आए, तो उन्हें ध्यान आएगा ना, माता में बच्चे कहाँ से आते हैं? बीज से आए ना, तो बीज बाप हुआ ना, तो जो बीज बाप है उसमें सारा परिवार भरा हुआ है, वो है हद का परिवार, और ये है मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का परिवार। ये मनुष्य सृष्टि रूपी जो बेहद का परिवार है, इसका भी कोई बीज रूप बाप है, कौन? जिसे सब धर्म वाले आदम, एडम, आदिनाथ, आदिदेव के रूप में मानते हैं। तो माँ सारी मनुष्य सृष्टि में एक ही बीज है, सारी मनुष्य सृष्टि का एक बीज बाप, जिस बीज में से 500-700 करोड़ बच्चों का जन्म होता है। अरे हद का बाप होता है? हैं? नहीं होता है हद का बाप? होता है हद का बाप, जो हद का परिवार पैदा करता है, उस हद के परिवार में ढेर के ढेर जो भांति होते हैं परिवार के, छोटे बड़े बच्चे बच्चियां माता, वो कहां से आते हैं? हैं? कहां से आते हैं? कहेंगे माँ का, माँ के पेट से आते हैं। अरे माँ के पेट में से, पेट में भी कहां से आते हैं? बाप बीज रूप बाप कहां से आते? उस बीज रूप बाप में पूरा परिवार भरा हुआ है, क्या छोटे बड़े सब बच्चे बच्चियां उसी में भरे हुए हैं। उस बीज में से जैसे हद का परिवार आता है, वैसे ये वसुधैव कुटुंबकम रूपी बेहद का परिवार है। ये बेहद का परिवार भी एक ही बीज है, जिस बीज में सारी मनुष्य सृष्टि 500-700 करोड़ पत्तों की समा जाती है, उसी बीज से सारी मनुष्य सृष्टि बाहर आती है। नंबर बार कोई सतयुग में आके जन्म लेंगे, कोई त्रेता में जन्म लेंगे, कोई द्वापर में जन्म लेंगे, कोई कलयुग में जन्म लेंगे। अब कोई पूछे कि वो परम धाम कहां गया, कौन सा है जिसे बताया सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार, और गीता में भी लिखा हुआ है, न तद भाषयते सूर्य न शशांको न पावक है यज्ञत्वा निवर्तन्ते तद धाम परम मम। कौन सा परम नाम मेरा है जहाँ न सूर्य का प्रकाश पहुंचता, न चंद्रमा का प्रकाश पहुंचता, न सितारों का प्रकाश पहुंचता, वो मेरा परम धाम है जहां का मैं रहने वाला हूं। तो वो कहता है कि बच्चे इस मनुष्य सृष्टि में जो तुम परम धाम बनाते हो, वो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं बनाती हैं परम धाम है? कि थोड़ी सी आत्माएं जो आत्मिक स्टेज में इकट्ठी होकर रहती हैं, वो बनाती हैं है? परम धाम में तो आत्मिक स्टेज में रहेंगी ना, बिंदु की स्टेज में रहेंगी ना, लेकिन इस सात आठ सृष्टि में जो परम धाम बनेगा, वहां कितने बच्चे होंगे जो आत्मिक स्टेज में होंगे? 4.5 लाख होंगे। तो 4.5 लाख जो बीज हैं सारी मनुष्य सृष्टि के, उनमें 500-700 करोड़ समाए हुए हैं। क्या कहा? 4.5 लाख में सारी दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, वो सब उसमें समाई हुई है 4.5 लाख। तो जो 4.5 लाख हैं, वो पहले पहले मनमना बहु बनेंगे या 500-700 करोड़ पहले मनमना बहु बनेंगे? 4.5 लाख पहले पहले मनमाना भव बनेंगे। जो 4.5 लाख पहले पहले मनमाना भव बनेंगे वो आत्माएं निराकारी स्टेज में आ जाएंगी या नहीं, मनमाना भव हो जाएंगी या नहीं? बाप के मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु में समा जाएंगी या नहीं? जो बाप का संकल्प 100 सब बच्चों का एक ही संकल्प हो जाएगा या नहीं? हो जाए। इसीलिए शास्त्रों में ये बात आई है क्या के हम सब आत्माएं सागर के बुदबुदे हैं, बलबूले हैं, छोटे बड़े क्या हैं? सागर के बुदबुदे बलबूले हैं, छोटे बड़े सागर से ही निकलते हैं और सागर में ही समा जाते हैं। इसलिए शंकराचार्य ने लिख दिया था, वास्तव में तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। क्या एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ भी मूल रूप में उन्होंने बता दिया कि मूल रूप में ये संसार क्या है, एक ही बीज है जिसमें से ये सारी सृष्टि निकलती है और अंत में सब उसी में समा जाते हैं। कब समा जाते हैं? तब समा जाते हैं जब वो वृक्ष का बीज वृक्ष से डिटैच हो जाता है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हो जाता है। मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है तो उसका पहला कोई फल भी होता होगा नहीं? पहला फल होता है, उससे पहले फल में कोई बीज भी पकता होगा। फल पकता है तो बीज उस फल से डिटैच हो जाता है, सारे वृक्ष से डिटैच हो जाता है। अटैचमेंट रहता है वृक्ष के पत्तों में, टहनियों में, तनों में, फलों में, फूलों में लगाव रहता है, नहीं लगाव रहता? तो यही बाप सिखलाने आए। जो धन का अखूट भंडार बाप है, ज्ञान धन का, क्या ज्ञान धन, क्या ज्ञान सिखलाने आए हैं? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा कैसे बना जाए, इस सारी दुनिया से मोह नष्ट हो जाए, अपनी देह से मोह नष्ट हो जाए, देह के पदार्थों से मोह नष्ट हो जाए और देह के संबंधियों से, देह के संपर्कियों से भी मोह नष्ट हो जाए। कैसे नष्ट होगा वो भी गीता में लिख दिया, संगात संजायते कामा। क्या संग करने से कामना उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। कोई का संग करेंगे लगातार, लगातार उसके साथ रहेंगे तो कामना पैदा हो जाएगी। बुद्धि से संग नहीं करेंगे तो कामना पैदा नहीं होगी। तो क्या करें, जो कामना है, इच्छा है, वो इच्छा ही इच्छा मात्र अविद्या हो जाए है? क्या करें? सन्यासियों ने तो सिखाया कि परिवार से दूर हो जाओ, देह के संबंधियों से दूर हो जाओ, घर मकान जमीन जायदाद छोड़ करके जंगल में चले जाओ। चले गए, चले तो गए, लेकिन फिर होता क्या है, छोड़ के चले गए, फिर वहां जाकर के बुद्धि में वो ही याद आता रहता। तो क्या डिटैच हुए, अटैचमेंट खत्म हुआ, नष्ट मोह हो गए, नहीं हुए ना, तो कैसे होंगे? तो बाप बताते हैं कि घर बार छोड़ने की दरकार नहीं है, देह के पदार्थ, देह के संबंधी, देह के संपर्कियों को छोड़ने की दरकार नहीं है, भले उनके बीच में रहो लेकिन मन बुद्धि से डिटैच हो जाओ। क्या ये जो शरीर की 10 इंद्रियां हैं, जो आंखों से दिखाई देती हैं, इन इंद्रियों की ताकत से भी एक बड़ी ताकत और है इस शरीर के अंदर, 11वीं इंद्रिय। क्या नाम है? मन। उस मन को बुद्धि के कंट्रोल में करो और डिटैच हो जाओ। मन बुद्धि से, देह से, देह के पदार्थों से, देह के संबंधों से डिटैच हो जाओ, मन बुद्धि से दूर चले जाओ। कैसे चले जाए? तो बताया इस सृष्टि में ज्ञान के आधार पर इतना तो जान सकते हो कि तुम वास्तव में क्या हो। तुम विनाशी देह नहीं हो, क्या हो? आत्मा अविनाशी हो। अविनाशी आत्मा का बाप, अविनाशी परम पिता परमात्मा शिव। लेकिन वो परम पिता परमात्मा शिव जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, और हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, इसलिए हम सब भूल जाती हैं। मृत्यु होने के बाद, नया जन्म लेने के बाद हमें सब भूल जाता है, और उसको कुछ भी भूलता नहीं, वो त्रिकालदर्शी है। और हम तीनों काल के ज्ञाता नहीं है, तो वो आकर के बताता है कि तुम भी अपन को आत्मा समझो, पक्की प्रैक्टिस करो। क्या कि हम ये विनाशी पांच तत्वों का पुतला, मिट्टी का पुतला नहीं है, हम तो अविनाशी आत्मा है, और अविनाशी आत्मिक स्मृति में टिको। इस स्मृति में टिकने से तुम्हें बाप आत्माओं का सहज सहज याद आएगा। जो आत्माओं का बाप त्रिकालदर्शी है, कैसा है? त्रिकालदर्शी। तो अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा से उस त्रिकालदर्शी बाप को याद करेंगे, उसका संग करेंगे, तो क्या होगा, तुम भी त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा में भी तीनों काल में तुमने जो भी जन्म लिए हैं उनकी स्मृति तुम्हें आ जाएगी, उनमें भी जो पहला तुम्हारा जन्म है, श्रेष्ठ जन्म, 84 जन्मों में से पहला श्रेष्ठ जन्म, उसकी जब स्मृति आ जाएगी तो उसका बाप कौन है वो भी याद आएगा। तो पहले जन्म की जब स्मृति आएगी तो पहले जन्म की स्मृति में हम साकार मनुष्य होंगे, साकार देवता होंगे या निराकार आकार होंगे? साकार देव आत्मा होंगे। साकार देव आत्माओं को जन्म देने वाला भी साकार होगा या निराकार होगा? साकार होगा। उसको पहचानेंगे क्या? उसको पहचानेंगे तो उसके संपन्न रूप को भी जान जाएंगे। ये आखिरी स्टेज है पहचानने की, जिसके लिए बाप मुरलियों में 80 साल से कहते आए, क्या पहले बाप का परिचय दो, पहले बाप का परिचय दो। अरे ब्रह्मा बाबा खुद बाप को नहीं पहचान पाए तो ब्रह्मा कुमारियों को कहां से परिचय देंगे? और ब्रह्मा कुमारियां जो खुद ही अपने बाप को नहीं जानती, देह के बाप ब्रह्मा को ही सब कुछ मान बैठी, भगवान जान बैठी, वे फिर बाप का परिचय कैसे देंगे? भले प्रदर्शनी करते हैं, मेले मलाखड़े करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो 32 ग्रह वाला चित्र पहले लगा देते हैं, हम बाप का परिचय देते हैं। उनसे पूछो, जिसको तुम 32 गुणों वाला भगवान बाप कहते हो, वो भगवान निराकार निर्गुण है या साकार है? है? वो तो निराकार निर्गुण है। जो साकार होता है उसमें गुण भी होते हैं, उसमें अवगुण भी होते हैं। साकार जब सत्व प्रधान होता है तो गुण ही गुण, और जब तमो प्रधान बनता है तो अवगुण ही अवगुण हो जाते। उसमें जो कभी साकार बनता ही नहीं, उसमें न गुण होते हैं न अवगुण होते हैं। तो कोई कहे कि ब्रह्मा कुमारियां जो 32 गुण दिखाती हैं वो किसके गुण हैं? हाँ, इस सृष्टि पर योग बल के आधार पर जो मनुष्य आत्मा पहले पहले बाप समान बनती है, बाप है भगवान एक, तो भगवान की रचना भी भगवान भगवती होगी या देवी देवता होंगे? भगवान खुद भगवान है तो उसकी रचना भी भगवान भगवती है। जो भगवान भगवती बनते हैं उनमें ये गुण दिखाए गए, उनमें भी एक है जिसमें वो 32 गुण समाये हुए। वो 32 गुण देवताओं के गुण नहीं है क्या? देवताओं के गुण है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान सर्वगुण संपन्न बन जाए तो ये अवगुणों से भरी पूरी 500-700 करोड़ की सृष्टि, इसका मुकाबला कौन करेगा, सामना कौन करेगा, इसका विनाश कौन करेगा? कोई करेगा? देवताएं इसका विनाश करेंगे? नहीं कर सकते। तो वो सर्वगुण संपन्न नहीं बनता, वो 16 कला संपूर्ण नहीं बनता, वो कलातीत है। सूर्य कलातीत है या 16 कला संपूर्ण है? वो कलाओं से परे है। कलाओं से परे, 16 कलाओं से परे, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सारे कल्प का अंत करने वाला है। जो अंत है, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा मनुष्यात्मा, धर्मात्मा, धर्म पिता कर ही नहीं सका, पुराने पन का विनाश कोई ने नहीं किया। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आए, अपने अपने धर्म की स्थापना तो की, लेकिन पुरानी परंपराओं का नाश नहीं कर सके। तो जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो काम जो करे वो है भगवान, और वो कैसा है? करने वाला है, अकर्ता नहीं है। अकर्ता वो है और जिसमें प्रवेश करता है वो करता है, कर्तार है वो, अकर्ता है अभोक्ता है, और नीचे वाला कर्ता भी है और भोक्ता भी। दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा भोक्ता, सुख का भी बड़े से बड़ा भोक्ता, और कलयुग के अंत में दुख का भी बड़े से बड़ा भोक्ता। क्यों? जब इतना पावरफुल है तो दुख क्यों भोगता है? इसलिए भोगता है कि जो भी धर्म पिताएं आए हैं, उन्होंने धर्म के धक्के खाए हैं या नहीं खाए हैं? अपने फॉलोअर्स के लिए धर्म के धक्के खाने पड़े हैं या नहीं खाने पड़े? कोई भी बाप होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए धक्के खाते हैं या नहीं खाते हैं? या आराम से बैठ जाते हैं? ऐसे ही वो परमपिता है, मनुष्य सृष्टि का परमपिता। क्या? आत्माओं का पिता नहीं। आत्माओं का पिता तो शिव है, उसकी बिंदी का ही नाम शिव है, और बिंदु बिंदु आत्माओं का नाम शरीर पर होता है, और उसका नाम आत्मा के ऊपर होता है। तो दूसरी जो आत्माएं हैं, जिनका शरीर पर नाम पड़ता है, उन शरीरधारियों में बड़े से बड़ा जो पावरफुल आत्मा है, वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप। वो मनुष्य सृष्टि रूपी जो बाप है, उसको बिल्कुल भूल गए हैं। जिस बाप ने यहाँ इस शक्ति पर बैठ करके सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनाए, क्या क्या बनाए? सूर्यवंशी भी बनाए और चंद्रवंशी भी बनाए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही बनाए, और वर्ण नहीं बनाए। गीता में तो लिखा है चातुर्वर्ण्य माया सृष्टम गुण कर्म स्वभाव से, चार वर्णों की रचना मैंने गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर की है। कौन से युग में है? कौन से युग में की? संगम युग में की। संगम युग में भले ब्राह्मण तो हैं, लेकिन एक कुरी के ब्राह्मण हैं या नौ धर्मों से आए हुए नौ कुरी के ब्राह्मण हैं? नौ कुरियों के ब्राह्मण हैं। उन ब्राह्मणों को मुख्य रूप से चार वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण सो देवता, सतयुग के त्रेता के क्षत्रिय, द्वापर के वैश्य और कलयुग के शूद्र। यहाँ बाप देखते हैं कि इन बच्चों में पवित्र रहने वाले ब्राह्मणों का गुण है, पवित्रता का इनमें विशेष गुण है, जिस पवित्रता के आधार पर दुनिया के सारे कर्म होते हैं अच्छे से अच्छे। प्योरिटी की पावर होगी तो कोई भी कर्म संपन्न होगा, प्योरिटी की पावर नहीं होगी तो कर्म संपन्न नहीं होगा। अच्छे से अच्छा कर्म हो और बुरे से बुरा कर्म हो, चोरी डकैती वगैरह वगैरह, वो भी तब ही संपन्न हो सकता है जब प्योरिटी की पावर होगी। जलंधर है राक्षस, उस राक्षस में कौन सी पावर थी जो भगवान भी उसको उस समय हरा ही नहीं सका? वो पत्नी जो पवित्रता रूपी थी वो किसकी मुट्ठी में थी? जलंधर की मुट्ठी में थी ना, तो पवित्रता ही पावर हुई ना। जब वो हाथ से निकल गई तो जलंधर धराशायी हो गई। तो देखो ये प्योरिटी की पावर है। इस समय जो ब्राह्मण बनने वाले देव आत्माएं हैं वो भी धारण कर रहे हैं, और जो लास्ट गुरु के नौवीं गुरु के ब्राह्मण हैं वो भी उस पवित्रता को धारण करते हैं। और पवित्रता आती कैसे है, कैसे आती है? गीता में भी लिखा हुआ है, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में जो ज्ञान है भगवान का उससे जास्ती पवित्र और कोई चीज है ही नहीं। जिसने भगवान के उस धन को धारण कर लिया वो सबसे जास्ती पवित्र बन सकता है। जितना गहरा ज्ञान धारण करेगा उतना गहरा पवित्रता को धारण करेगा। ऊपर ऊपर का ज्ञान धारण करेगा तो ऊपर ऊपर की पवित्रता धारण करेगा। जैसे दुनियावी सन्यासी है उन्होंने ऊपर ऊपर की पवित्रता धारण की या अंदर की पवित्रता धारण की? ऊपर ऊपर की पवित्रता धारण कर ली। अंदर की पवित्रता का नमूना देखना हो तो शिव के मंदिरों में शिवलिंग और जलाधारी को देखो। 24 घंटे प्रवृत्ति में है या निवृत्ति में है? शिव और जलाधारी, ज्ञान जल को धारण करने वाली कन्याएं माताएं ही होती है ना। तो ज्ञान जल को धारण करने वाली वो जलाधारी जो पार्वती के रूप में दिखाई जाती है, सारी दुनिया को पार लगाने के निमित्त बनती है वो जलाधारी, और वो पुरुष रूप शिवलिंग जिसका लिंग ही पूजा जाता है और कोई इंद्रिय नहीं पूजी जाती है, वो लिंग रूप पुरुष रूप में भगवान बनकर संसार में प्रत्यक्ष होता है या स्त्री रूप में प्रत्यक्ष होता है? है? पुरुष रूप में प्रत्यक्ष होता है या गुलजार दादी बनकर प्रत्यक्ष होता है? है? पुरुष रूप में प्रत्यक्ष होता है। तो जो पुरुष है वो लिंग रूप दिखाया गया है। लिंग रूप कैसे है कि वो देह की इंद्रियों से तो प्रवृत्त है लेकिन मन बुद्धि से निवृत्त है। कैसे निवृत्त है? मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है वो आत्मा से निवृत्त है। सन्यासी है, सन माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी। क्या दसों इंद्रियों से जो सुख की प्राप्ति होती है उसका त्याग करने वाला, तो वेद का त्यागी हुआ ना। जो वेद का त्यागी है वो ही बन सकता है जो ईश्वर के सत्य ज्ञान को धारण करता है। क्या सत्य ज्ञान को धारण नहीं कर सकता तो संपूर्ण वेद का सन्यासी भी नहीं बन सकता, और वेद का सन्यासी नहीं बन सकता तो पवित्रता जो असली है उसको धारण करने वाला भी नहीं बन सकता। तो बताया कि बाबा यहाँ इस सृष्टि में बैठ करके हमको सूर्यवंशी बनाते हैं, चंद्रवंशी बनाते हैं हमको, फिर द्वापर युग से द्वैतवादी धर्म पिताएं आकर के हमको विशेष बनाए देते हैं कि बाबा बनाता है, है? विशेष कौन बनाता है? धर्म पिताएं, देहधारी धर्मगुरु आते हैं, वो हमें विशेष बनाए, विशैला बना देते हैं। भगवान निर्विष बनाता है, पवित्र बनाता है, और देहधारी धर्मगुरु अब पवित्र बनाई देते हैं। ये तुम्हारी बुद्धि में है ना कि तुम्हें सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता किसने बनाया है? किसने बनाया? शिव बाप ने बनाया। जो बनाने वाला है डॉक्टर, डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर, इंजीनियर बनाएगा, वकील, जज, वकील बनाएगा। तो शिव जो ज्योतिबिंदु है वो स्वयं देवता है, वो बनाता है, फिर सबको क्यों नहीं बना देता? पार्शलिटी करता है, पक्षपात करता है। आत्माएं है तो 500-700 करोड़ सभी हैं, सभी आत्माओं को क्यों नहीं बनाता? वो कहता है मैं बनाता नहीं हूं, मैं युक्ति बताता हूं। क्या? मैं मनुष्य से देवता बनने की युक्ति बताता हूं, रास्ता बताता हूं, मैं स्वयं नहीं बनाता। तो फिर कौन बनाता है? जो भी पुरुषार्थियों में अव्वल नंबर पुरुषार्थी है वो बाप समान बनता है, शिव समान बनता है, और फिर बनकर के दूसरों को बनाता है। तो बताओ, जिसको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचा करतार, वो ऊंचे ते ऊंचा करतार कौन सी आत्मा है? शिव बाप कहते हैं मैं करण करावनहार हूं। क्या? मैं करणहार हूं और कराने वाला भी हूं। तो बताओ, वो सूर्यवंशी बनाता है, चंद्रवंशी बनाता है, करणहार है तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाता है। अरे है? वो वंशी खुद ही नहीं है क्या? वो सूर्य का वंशी नहीं है, वो स्वयं सूर्य है क्या? लेकिन निराकार है। और तुम बच्चे वंशी बनते हो, वंशी माने एक का बच्चा, एक फिर उसका बच्चा दूसरा, फिर उसका बच्चा तीसरा, ये वंश हो गया। तो तुम बच्चे वंशी बनते हो, मेरे को तो बनाने वाला कोई बाप है ही नहीं, उसको बनाने वाला कोई है?
है, तुमको बनाने वाला है, क्योंकि तुम सिर्फ निराकार नहीं हो, तुम निराकार सो साकार भी बनते हो। तो तुमको बनाने वाला है, जो बनाने वाला है वो
क्या बनता है,
क्या बनता है, निराकार भी बनता है और साकार भी है, दोनों का मेल है। संपन्न स्टेज में आता है तो भी दोनों का मेल है, साकार लिंग रूप भी है बड़ा रूप, साकार बड़ा रूप होता है, छोटा रूप बड़ा रूप, और उसमें अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा भी है, आत्मिक स्टेज भी है, शिवलिंग जिसे कहा जाता है वो करतार है, करने वाला है, ऊंचे ते ऊंचा करतार, किससे किससे ऊंचा, ब्रह्मा से भी ऊंचा, इब्राहिम से भी ऊंचा, बुद्ध से भी ऊंचा, क्राइस्ट से भी ऊंचा, सभी धर्म पिताओं से भी ऊंचा करतार है, करने वाला है। कोई कहे कि वो करतार है, फिर वो निराकार शिव क्या है, है वो करने वाला करता नहीं है, है? करता है या अकर्ता है, वो तो अकर्ता है, वो कुछ करता नहीं है, फिर ना कराता भी नहीं है, फोर्स डालता है कराने के लिए नहीं, वो तो प्यार का सागर है, धर्मराज की तरह फोर्स डालता है निराकारी बन जाओ, देवान छोड़ दो, है वो कराता भी नहीं करता भी नहीं, तो क्या है वो, सिर्फ रास्ता बताता है, क्या है, रास्ता बताने वाला है। तो ये बुद्धि में तुम्हारी है कि किसने बनाया, फिर हमने 84 जन्म लिया है, देवता बने 16 कला संपूर्ण, फिर हमने कितने जन्म लिए, 84 जन्म लिए, ये भी समझा, इस चक्र को समझा, 84 की चक्र को। तो जब यहाँ बैठे हो, उठते चलते फिरते यह स्व आत्मा को बाप का और बाप की रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, बस ये ज्ञान तुम्हारे सिवाय, तुम ब्राह्मणों के सिवाय और बाकी कौन है यहाँ इस सृष्टि पर जिनकी बुद्धि में ये 84 का चक्र ज्ञान है। यहाँ बच्चे तुम्हारे सिवाय तो सात शूद्र हैं, क्या है, शूद्र बुद्धि हैं, शूद्र ज्ञान धारण नहीं करते हैं, ज्ञान धारण करते हैं, ज्ञान लेना और ज्ञान देना किसका काम है, शूद्रों का, ब्राह्मणों का काम। तो तुम शूद्र पैरों से निकल आए हो, क्या ये मत, ये है हिस्सा, वो है सतयुग, नाभि तक त्रेता और नाभि से नीचे घुटनों तक द्वापर और उससे नीचे एड़ी तक कलयुग शूद्र और एड़ी से लेकर चोटी तक चढ़ती कला का संगम युग। तो तुम शूद्र जो पैर हैं उनसे निकल करके तुम एकदम ऊपर चोटी पर आ गए, कहाँ आ गए, चोटी पर, इसलिए जब चोटी में गांठ बांध लेते हैं तो क्या बन जाता है? शिवलिंग बन जाता है। तो तुम चोटी समान ब्राह्मण हो जिनके अंदर वो शिव बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? शिव। लिंगाकार बन जाता है ना। बाबा ने समझाया ना बच्चों को कि विराट स्वरूप क्या है। तो ये चित्रों में विराट स्वरूप भी बनाते हैं। जो विराट स्वरूप भक्ति मार्ग में बनाते हैं वो भी रंग है, उसमें भी झूठ है। क्योंकि मुख्य जो बात है चोटी और शिव बाबा। चोटी में क्या है? ब्राह्मण चोटी के अंदर क्या है? शिव बाबा। तो वो तो उनका चित्र देते ही नहीं है। किनका? विराट रूप का जो चित्र बनाते हैं उसमें न ब्राह्मणों को दिखाया है न शिव को दिखाया है। उड़ा दिया। किसको किसको दिखाया है? देवताओं को दिखाया, क्षत्रियों को दिखाया, वैश्यों को दिखाया और शूद्रों को दिखाया। अभी तुम बच्चों को शिव बाबा ने ब्राह्मण बनाया। जिन ब्राह्मणों का चित्र विराट रूप के चित्र में है ही नहीं, उड़ाई दिया। तो बताओ ब्राह्मण जो बनाया वो किससे बनाया? ब्राह्मण बनाया शूद्र से। किससे बनाया? शूद्र से ब्राह्मण बनाया। शूद्र, शूद्र माने बिल्कुल नीची कैटेगरी से तुमको ब्राह्मण बनाया। शूद्र माने नीच कर्म करने वाले। क्या करते हैं नीच कर्म? है गंदगी साफ करते हैं। तो गंदगी साफ करने वाले जो शूद्र थे तुम, उन शूद्रों से तुम्हारी मन बुद्धि रूपी आत्मा को क्या बना दिया? ब्राह्मण बना दिया। जिस मन बुद्धि तुम्हारी आत्मा में ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान का लेन देन करते हो, ज्ञान का धंधा करते हो, जो बाप का धंधा सो तुम्हारा धंधा। तो ये तो जानते हो ना बच्चे अच्छी तरह से। बाबा ने ये खेल समझा दिया है तुम कैसे 84 जन्म के चक्र की बाजी ऐसे ऐसे खेलते हो। क्या जब तुम भक्ति मार्ग में मंदिरों में परिक्रमा लगाते हो तो बायजोली खेलते ना, नीचे सर ऊपर पांव, फिर नीचे पांव ऊपर सर, ऐसे गुलाटी मारते मारते परिक्रमा लगाते हो। तो अभी क्या कर रहे हो? है क्या कर रहे हो? है माया नीचे गिराई देती है तो सर नीचे चला जाता है, सर नीचे चला जाता मिट्टी की ओर तो पांव बाप के घर में चला जाता, लात मार देते होता ना। और फिर क्या करते हो? फिर गुलाटी लगाते हो तो पांव मिट्टी की दुनिया की तरफ और सर ऊपर चला जाता बाप की याद में, परमधाम की याद में, नई दुनिया की याद में। तो देखो ये खेल तुमको अच्छी तरह से बाप ने समझाया। क्या करते हो? बायजोली का खेल प्रैक्टिकल में तुम खेल रहे हो। तुम कैसे 84 के जन्म की बाजी खेलते हो? पहले पहले अभी तुम जानते हो कि हम अभी ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मणों को रचने वाला ब्रह्मा द्वारा बाप है। क्या कहा? हम ब्राह्मणों को ब्राह्मण बनाने वाला कौन है? है बाप रचयिता है। कौन सा बाप? शिव बाप रचयिता है, सृष्टि साकार, तो बाप भी साकार और आत्माओं का बाप निराकार, तो फिर आत्माएं भी निराकार। तो बताओ साकार सृष्टि को रचने वाला बाप कौन हुआ, साकार हुआ या निराकार हुआ? साकार हुआ। तो बताया तुम ब्राह्मणों, ब्राह्मणों को रचने वाला ब्रह्मा द्वारा बाप है, ब्रह्मा द्वारा बाप रच रहे हैं हम ब्राह्मणों को। बीच में कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा किसे कहे? ब्रह्मा किसे कहे? शिव बाप कहते हैं मैं जिसमें भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, रखता तो हूँ ब्रह्मा, ब्रह्मा नाम। लेकिन ब्रह्मा नामधारियों में ब्रह्मा का सहनशीलता का पार्ट बजाने वाला असली ब्रह्मा कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा। तो जो दादा लेखराज ब्रह्मा है वो ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया कि रह गया? शरीर छोड़ दिया। तो संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता या अधूरा ब्राह्मण सो देवता? अधूरा ब्राह्मण सो देवता। संपूर्ण ब्राह्मण बनेगा तो देवता बनेगा। तो वो ब्रह्मा कौन जो संपूर्ण ब्राह्मण बनाता है? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म तो पहले को कहा जाता है, शिव बाप ऊपर से आते हैं, परम पिता, बड़े से बड़ा पिता जिसका कोई पिता नहीं, तो बड़ी की बड़ी माँ होगी, परम ब्रह्म होगा। तो बड़े से बड़ा बाप जो आत्मा है, आत्माओं का बाप आत्मा है ना, आत्मा मेल है या फीमेल है? आत्मा तो मेल है, परम पुरुष है ना। तो जो बड़े से बड़ा आत्माओं का बाप है वो इस सृष्टि पर आता है, तो आशिक बनकर आता है या माशूक बनकर आता है? आशिक बनकर आता है। आशिक मेल या फीमेल? आशिक। दुनिया में भी जो आशिक होते हैं वो माशूक के पीछे भागते हैं कि माशूक आशिक के पीछे भागता है? पुरुष भागते हैं ना माशूका के पीछे। तो शिव बाप है आशिक, और वो किसके पीछे भागा? कौन हुआ माशूक? परम ब्रह्म। क्या परम ब्रह्म? कैसे? बड़े से बड़ी माँ कैसे है? माँ क्यों कहा? ब्रह्म माँ, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, माताओं में सबसे बड़ी माँ। कैसे? ब्रह्मा सो क्या बनता है? ब्रह्मा सो विष्णु। और ब्रह्मा एक तो है नहीं, पंचमुखी ब्रह्मा भी गाया हुआ है, चतुर्मुखी भी ब्रह्मा गाया हुआ है, तो पांच मुख वाला ब्रह्मा है, तो विष्णु भी, विष्णु भी पांच ही होने चाहिए ना, चार तो भुजाएं, और भुजाएं अपने आप चलती हैं, कोई चलाने वाला है? वो चलाने वाला ऊपर है ना, तो जो ऊपर है वो चलाने वाला, वो परम ब्रह्म। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै नमः। दूसरे ब्रह्मा को नमन नहीं करता हूँ, किसको नमन करता हूँ? उस ब्रह्मा को नमन करता हूँ। तो परम ब्रह्म जो है वो परम ब्रह्म बड़े से बड़ी माँ है, बड़े से बड़े बाप की, जिस बाप की, बाप का कोई बाप होता ही नहीं, वो तो आत्माओं का बाप है, है? माता साकारी स्टेज वाली होगी या निराकारी स्टेज वाली? धरणी माता कही जाती है, पिता सूर्य कहा जाता है। तो जो पिता है वो, और जो माता है वो साकार कौन है? माता पांच तत्वों में बंधी हुई है, धरणी, धरणी में पांचों तत्व समाये हुए हैं। तो माता जो है वो देह अभिमान वाली होती है और पिता बीज होता है। क्या? जो माता देह अभिमान वाली है, धरणी है, वो धरणी बीज को धारण करती है। क्या करती है? बीज को धारण करती है। ऐसे ही आत्मा आत्माएं जो बीज हैं, उन बीजों में जो बड़े से बड़ा बीज परम पिता शिव है, उस बीज को धारण करने वाली कोई साकार होगी या निराकार होगी? कौन? साकारों में सबसे बड़ा साकार कौन? मनुष्य सृष्टि में 500-700 करोड़ साकार आत्माएं, उनमें बड़े से बड़ा साकार कौन बनते हैं? अनेक हैं या एक? एक है। वो जो एक है वो बड़े से बड़ा देह अभिमानी है कि थोड़ा देह अभिमानी? बड़े से बड़ा देह अभिमानी, और वो ही बड़े से बड़ा आत्मा अभिमानी। कैसे? योगी बनता है, पक्का योगी बनता है तो क्या बन जाता? आत्मा बन जाता। और भोगी बनता है तो क्या बन जाता है? देह अभिमानी बन जाता, बड़े से बड़ा। तो जो बड़े से बड़ा देह अभिमानी है वो ही परम ब्रह्म हुआ। तो बताया ब्रह्मा द्वारा रचने वाला बाप है। अब उन ब्रह्मा नामधारियों में वो ब्रह्मा कौन सा जो माताओं की तरह बहुत सहन शक्ति वाला है, बहुत सहनशील है? वो कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा और फिर कृष्ण की आत्मा। जो कृष्ण की आत्मा है वो मन रूपी घोड़ा है। क्या है? मन रूपी घोड़ा कहो, बैल कहो, बात एक ही है। उसके लिए बोला, मन कहो या दिल कहो, जो नर से नारायण बनने वाली आत्मा है उसका दिल किसके ऊपर है? अरे दुनिया में जितने भी बाप होते हैं उनका दिल किसके ऊपर होता है? बड़े बच्चे के ऊपर होता है। तो यहाँ भी ऐसे ही है कि जो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, तो कहने वाले का मन है या दिल कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा माने कृष्ण की आत्मा। जो पढ़ाई पढ़ा रहा है वो सारी पढ़ाई पहले पहले नंबर में किसको पढ़ा रहा है? वो सुधरेगा तो 500 करोड़ पत्ते सुधरेंगे। पहला पत्ता सुधरेगा तो सब सुधरेंगे। पहला निश्चय बुद्धि बनेगा तो सब निश्चय बुद्धि बनेंगे। तो उसका दिल किसके ऊपर है? बड़े बच्चे के ऊपर है, जो पहला पत्ता है सृष्टि का। तो बताया मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो जो मेरा मन है, मेरा दिल जिसके ऊपर है, उसके मन में विशेष गुण क्या है?
सहनशीलता।
तो मन मनोभाव का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे मन में समाजा का मतलब मेरे मन में, मेरे दिल में जो विशेष गुण है वो विशेष गुण तुम बच्चों के अंदर भी आ जाना चाहिए। आएगा तो देवता बनेंगे, नहीं आएगा तो देवता नहीं। जिस नंबर में वो गुण आएगा उस नंबर के देवता बनेंगे, नहीं आएगा तो ऊंचे नंबर के देवता नहीं बनेंगे। तो मन मना भव, मेरे मन, मेरे दिल, मेरे कृष्ण रूपी दिल बच्चे में समा जा, उसमें जो विशेष गुण है उस विशेष गुण में समा जा, अपने को उस विशेष गुण में सराबोर कर दे। जब तक ऐसा नहीं करेगा तो देवता नहीं बनेगा। नर से क्या बनना है? नारायण जैसा देवता बनना है। ये लक्ष्य धारण करना है तो क्या करना है? सहन शक्ति को दान करना, नहीं तो बाप तो बताए देते हैं। अभी यहाँ पुरुषार्थ करके जो सर्व गुणों का राजा सहन शक्ति है उसे अभी ब्राह्मण जन्म में धारण नहीं किया तो बताए देता हूँ मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। कैसे ले जाऊंगा? मच्छरों में देह या देह अभिमान होता है? हैं? उसमें कोई भी देह ऐसे बना के ले जाऊंगा। मच्छर सदस्य तुम्हारी आत्मा में कोई भी देह भान नहीं रह जाएगा। ये देह अभिमान रूपी जो चोला है वो धर्मराज मार मार के सारा चोला सारा छिलका तुम्हारा उतार देगा। तो वो तो हो गई जबरदस्ती, और बाप तो प्यार का सागर है कि जबरदस्ती का सागर है? प्यार का सागर है। तो प्यार के बच्चे बनोगे, प्यार के सागर के बच्चे बनोगे या मार के बच्चे बनोगे? प्यार के सागर के बच्चे बनो। क्यों पिटाई हो? क्या अच्छा लगता है? है प्यार अच्छा लगता है या पिटाई अच्छी लगती है? प्यार अच्छा लगना चाहिए। तो बताया ये बुद्धि में अच्छी तरह से रखो, घड़ी घड़ी भूलो नहीं, क्योंकि जब कि रचयिता और रचना के ज्ञान से ही तुम सुदर्शन चक्रधारी चक्रवर्ती राजा बनते हो तो वो नॉलेज को भूलना थोड़े ही होता है। ये नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में कायम रहनी चाहिए। उस नॉलेज को भी रिफ्रेश करने के लिए सुबह को उठते ही अपना हाथ मुंह धो करके स्वदर्शन चक्रधारी बन करके बैठ जाना चाहिए। ऐसे नहीं उठ करके तो बैठ गए और मुंह हाथ उठ करके धोया नहीं है तो क्या होगा? वो जो छठा विकार है ना, कुंभकर्ण, वो सवार होता रहेगा। ये याद रहे कि रचयिता बाबा, कौन सा बाबा? रचयिता बाप या रचयिता बाबा? रचयिता बाबा। और रचना के आज मध्य अंत को हमने अपने 84 के चक्र को जान लिया, और ये भी जानते हैं कल पहले भी बाबा ने आए करके समझाया था। अभी की बात नहीं, कल पहले भी आए करके समझाया था। कौन सा बाबा ने समझाया था? पूछा कौन सा बाबा? कहेंगे शिव बाबा। अरे शिव तो बिंदी का नाम है, वो बिंदी तो आत्माओं का बाप है कि बाबा है? हैं? वो तो सिर्फ बाप है, उसका कोई दूसरा संबंध
नहीं।
बाबा माने ग्रैंडफादर, वो संबंध बनता ही नहीं, उसका तो एक ही संबंध है, हम आत्मा आत्मा भाई भाई और वो हमारा बाप, दूसरा कोई संबंध। जब शरीर में आते हैं तो अनेक प्रकार के सर्व संबंध दुनिया के जितने भी हैं, वो हम उस बाप के साथ निभा सकते हैं। एक संबंध नहीं, दुनिया के सारे संबंध उस बाप के साथ निभा सकते हैं। बोला कौन सा बाबा है? हाँ, वो रचयिता है सृष्टि का। कौन सी सृष्टि? जो सुखदाम भी बनती है और दुखदाम भी बनती है। तो सुखदाम का रचयिता है या दुखदाम का रचयिता है? सुखदाम का रचयिता बाबा, और फिर सबका बाबा है क्या? ऐसे नहीं कि वो 4.5 लाख का ही बाबा है क्या? नहीं। कितनों का बाबा है? 500-700 करोड़ का बाबा। आत्माओं का क्या बाबा? अरे, आत्माओं का बाप होता है या बाबा होता है? आत्माओं का बाबा नहीं हो सकता है? सुप्रीम सोल तो आत्माओं का बाप ही है, वो कभी बाबा चाचा मामा काका ताऊ बनता ही नहीं। लेकिन कौन है जो आत्माओं के बीच नाना चाचा बाबा काका ताऊ चाऊ सब बनता है? कौन है? वही जो बापों का बाप कहा जाता है, जो ग्रैंडफादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट फादर्स हैं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, महान धर्म पिता हैं ना। उनके धर्म के फॉलोअर से पूछो कि वो महान है या नहीं, कहेंगे महान है। तो उन ग्रेट फादर्स का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कौन है? वो निराकार या वो साकार? वो साकार है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। तो सबका बाबा है, आत्माओं का भी बाबा है। बाप नहीं, क्या है? बाबा। तो सभी आत्माओं का बाबा उसको कहते हैं ना बच्ची, क्या कहते हैं? सभी आत्माओं का बाबा, ग्रैंडफादर। क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर। कहते हैं बाप का वर्षा मिले या न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलता है। तो कहते भी हैं ये ब्रदरहुड है, सभी भाई भाई हैं, ऐसे भी कहते हैं। भाई भाई जब कहते हैं तब उनको ये तो जरूर है कि हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं, और हमारा बाप बाबा है। क्या? हमारा बाप आत्माओं का, वो शरीर में प्रवेश करके बाबा है। तो देखो अभी ऐसे कहते हुए भी भाई भाई हैं और जरूर हम सबका बाप है। बाप है जिसको निराकार कहा जाता है, परम पिता परमात्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परम पिता परमात्मा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? परम पिता परमात्मा किसको कहा जाता है? जो आत्माओं का बाप परमधाम वासी है सदा, उसको कहा जाता है या किसी और को कहा जाता है? दोनों को कहा जाता है। परमपिता परमात्मा कहा जाता है इस सृष्टि में कहा जाता है या परमधाम में कहा जाता है? इस सृष्टि में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, द्वापर कलयुग भक्ति मार्ग में भी परमपिता परमात्मा कहा जाता है या नहीं है? परमपिता परमात्मा जब कहते हैं तो परमपिता आगे और परमात्मा बाद में, ऐसे तो नहीं कहते परमात्मा परमपिता? कहते हैं नहीं कहते? शिव शंकर कहते हैं, शंकर शिव क्यों है? बड़ा पहले और छोटा बाद में। तो बताया परमपिता माने आत्माओं का पिता, जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले 4.5 लाख हैं, उनका कौन पिता है? जो पुरुषार्थ करके आत्मा बनते हैं उनका पिता पुरुषार्थ ही है या बिना पुरुषार्थ करके पिता बनता है? पुरुषार्थ करके परम पिता बनता है। परम पिता टैली किया ना, क्या पिताओं के बीच में टैली किया है या नहीं किया? टैली किया ना? किससे टैली किया? कौन से पिताओं के बीच में टैली किया? धर्म पिताओं से टैली किया। उसको धर्म पिताओं से टैली कर सकते हैं? क्यों है उसको क्यों है? वो किसी गिनती में नहीं आता। जो गिनती में आए सो चक्कर में भी आए, जो गिनती में नहीं आता वो चक्कर में भी नहीं आता। तो सभी आत्माएं भाई भाई हैं और हमारा बाप बाबा है। तो देखो ऐसे कहते हुए भी भाई भाई हैं और जरूर हम सबका बाप है, निराकार है, जिसको कहा जाता है परमपिता परमात्मा, वो परमपिता परमात्मा जिसको हम कहते हैं परमपिता परमात्मा, दोनों साथ साथ है या अलग अलग है? हैं? उसका यादगार क्या है? शिवलिंग यादगार। उसमें परमपिता आत्मा भी है और जो लाल लाल लिंग के रूप में दिखाया गया है वो उसका घर भी है। ये शरीर घर है या नहीं आत्मा का? तो शरीर रूपी घर भी है और उसमें रहने वाली आत्मा हमारा परमपिता भी है, परमधाम में रहने वाला है जहां हम सभी रहते थे, वो हमारा बाबा है। क्या कहा? जहां हम सभी रहते थे वो हमारा बाबा है। तो क्या ऊपर वाले परमधाम में रहते थे जो हमारा बाबा है? ऊपर वाला या नीचे वाला?
नीचे
षष्टि में ही है कोई जिसकी यादगार बनी है शिवलिंग शिव के मंदिरों में, वो हमारा बाबा है। लवली अक्षर है बहुत, कैसा लवली अक्षर है बहुत लवली। ये साकार के लिए होता है लवली या बिना साकार के लवली? चोला है तो लवली, चोला नहीं है तो मुर्दा हो गया, तो लवली कैसे? भक्ति मार्ग में तो बहुत याद करते हैं शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, याद करते हैं ना। अब जिसको याद करते हैं, जिसको इतना याद करते हैं तो प्रैक्टिकल में कभी हुआ है या नहीं हुआ है? गांधी जी को याद करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, हैं? तो कभी हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। तो ऐसे ही इस सृष्टि में कोई शिव बाबा हुआ है या नहीं हुआ है?
हुआ है,
है? और जो हुआ है, जिसको हम याद करते हैं, वो संपन्न रूप है या पुरुषार्थी अधूरा रूप है? संपन्न रूप है। उसका यादगार क्या है? वो लिंग रूप ही उसका यादगार। और आज तक भक्ति मार्ग में दुनिया ने कोई ने नहीं जाना कि ये शिवलिंग क्या है। कोई जानता है? है? ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे बनाया, ये किसकी यादगार है? तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हो? है कि जो लिंग रूप, साकार रूप, बड़ा रूप है, वो शरीर की यादगार है। जिस शरीर में पुरुषार्थ करके वो क्या बन गया? क्या बन गया? शिव समान बन गया। क्या बन गया?
शिव समान,
शिव समान, शिव ही बन गया। तो वो हमारा शिव बाबा, जाते हैं शिव बाबा के मंदिर में। कहाँ जाते हैं? शिव बाबा के मंदिर यादगार में जाते हैं, पूजा करते हैं। जिसकी पूजा करते हैं, जिसके मंदिर में जाते हैं, उसको जानते हैं वो कौन है? है? ये जानते हैं कि वो इस सृष्टि में भी मौजूद रहता है? कोई जानते हैं? जानते नहीं। जानते नहीं तो कैसे कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है? अरे जानते हैं कि नहीं जानते हैं? परमात्मा सर्वव्यापी है या नहीं? कैसे? न अहम तेषु ते मये, मैं उन फूल पत्तियों टहनियों में नहीं हूँ, वो मेरे में है। क्या? वो सब मेरे में समाये हुए हैं। तो इसका मतलब वो निकले कहाँ से? उसी से निकले। तो उसकी पूजा करते हैं मंदिर में जाकर के, शिव बाबा कहते हैं। तो पहले तो बाप ने समझाया था, क्या कहा? ये बात पहले तो बाप ने समझाया था, तुम बच्चों ने पहले पहले तो मेरी पूजा शुरू की थी। कौन बोला? तुम बच्चों ने पहले पहले द्वापर के आदि में मेरी पूजा शुरू की थी। कौन बोला? कौन सी आत्मा बोली? ब्रह्मा के तन में, दादा लेखराज के तन में, निराकार शिव बोला या साकार बोला? साकार बोला। निराकार बोला। तुम बच्चों ने पहले पहले तो मेरी पूजा शुरू की थी। मेरी, वो पूज्य बनता है? तो कैसे कहते? निराकार ने बोला। वो निराकार पूज्य बनता है? न मैं पूज्य बनता हूँ, न मैं पुजारी बनता हूँ। तो निराकार ने कैसे बोला? नहीं बोला, कि ये ब्रह्मा इंटरफियर करके बोलता है। क्या? ये ब्रह्मा शिव बाबा की वाणी के बीच में इंटरफियर करके बोलता है। जैसे कोई ना समझ बच्चा हो और बाप माँ से बातचीत कर रहा हो तो बच्चा बीच में बोल पड़ता है, तो ऐसे ही ये ब्रह्मा इंटरफियर करके बोलता है। ब्रह्मा क्यों इंटरफियर करके बोलता है? वो इसलिए बोलता है कि वो जानता है कि शिव मेरे में ही प्रवेश करके गीतापति भगवान बनता है। शिव का जो गीतापति भगवान का स्वरूप है, जो साकार गीतापति भगवान है, वो मैं हूँ। कौन? ब्रह्मा बाबा, ऐसे समझते हैं। तो तुम बच्चों ने पहले पहले तो मेरी पूजा शुरू की थी, मैंने ब्रह्मा बाबा ऐसे समझ बैठे कि हमने ही अपनी पूजा शुरू की राजा विक्रमादित्य के रूप में। क्या शिवलिंग जो है वो हमारा रूप है, है? अगर होता तो 52 मुरलियों में बोला योगी का कभी हार्ट फेल होता ही नहीं, और उनका तो हार्ट फेल हो गया। तो इससे साबित होता है कि वो संपन्न योगी नहीं बने, ये उनकी गलत फहमी थी। ब्रह्मा दादा लेखराज उर्फ कृष्ण वाली आत्मा की गलत फहमी थी, जो अपन को समझ बैठे कि हम ही गीता के साकार भगवान हैं। तो उन्होंने बोल दिया कि पहले पहले मेरी पूजा शुरू की थी। और फिर आगे बोला, ठीक है ना बच्चे, एक तो बीच में इंटरफेयर करके बोल दिया और दूसरे बच्चों से हामी भरवाते हैं, ठीक है ना बच्चे, क्योंकि मैंने ही तुमको मनुष्य से देवता बनाया। 10/11/66 की वाणी का दूसरा पेज। शूद्र बुद्धि से, तुच्छ बुद्धि से मैंने ही तुमको स्वच्छ बनाया। क्या? किसने बनाया? मैंने बनाया। देखो तुम आए हो ना यहाँ, कहाँ आए हो? मेरे पास। तुम आए हो ना यहाँ, क्या बनने के लिए आए हो? बाबा फोर्स में आ गए, क्या बनने के लिए आए हो यहाँ? तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनने आए हो। तो तुच्छ बुद्धि कहते हैं क्षुद्र बुद्धि, और स्वच्छ बुद्धि कहा है ऊंच बुद्धि भी कहा है। देखो ऊंच बुद्धि को कहते हैं पुरुषोत्तम बुद्धि, पुरुषों में उत्तम बुद्धि। पुरुष माने शरीर रूपी पुरी में श, पुरुष श माने सहन करना, आराम करना। शरीर रूपी पुरी में आराम करने वाली ये आत्मा, उसको कहते हैं पुरुष। शरीर रूपी पुरी में आराम करने वाली आत्माओं के बीच उत्तम आत्मा पुरुषोत्तम बुद्धि। कौन बोला? शिव बोला या ब्रह्मा की आत्मा बोली? हाँ, 2000 वर्ष कृष्ण की पूजा होती आई ना, तो उनकी बुद्धि में पक्का बैठा हुआ है कि पुरुषोत्तम बनने वाला तो मैं ही हूँ। देखो ये कोई प्रकार से कोई ने इनको बुद्धि दिया ना, क्या कहा? देखो ये कोई प्रकार से कोई ने इनको बुद्धि दिया ना, इनको, इनको माने किनको? ब्रह्मा को। ये कौन बोला? ये शिव बोला। देखो ये कोई प्रकार से कोई ने इनको बुद्धि दिया ना, जो इतना पुरुषोत्तम बना है। कितना पुरुषोत्तम है? पहला पत्ता बन गया 500-700 करोड़ में, उत्तम में उत्तम। क्या देवताओं में, सतयुग में जो देवताएं होते हैं उत्तम देवताएं, उन सब में उत्तम देवता पहला पत्ता, सभी पुरुष। इन पुरुषों को दुनिया में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, है वो सभी पुरुष इन पुरुषों को पुरुषोत्तम मानते हैं ना। भक्ति मार्ग में किसको पुरुषोत्तम मानते हैं? अरे दशावतार किसके मानते हैं? हाँ, राम का अवतार लिया, कृष्ण का अवतार लिया, ये किसके अवतार मान लिए? विष्णु के अवतार मान लिए ना। तो इन पुरुषों को श्रेष्ठ मान लिया ना। ये भी पुरुष है, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला है, यह भी माने कौन? ये भी पुरुष है, कौन? ब्रह्मा भी पुरुष है, पुरुष भी है, स्त्री भी है। स्त्री कैसे? हाँ, और यह भी पुरुष और स्त्री है। अरे और यह भी पुरुष और स्त्री है। अब ये दो जगह बोला, यह भी पुरुष है, किस तरफ इशारा किया होगा? ये भी पुरुष है, पुरुष भी है, स्त्री भी है, और यह भी पुरुष और स्त्री है, किस तरफ कहां कहां इशारा किया? नहीं, लक्ष्मी नारायण की तरफ एक बार इशारा किया और एक बार ब्रह्मा की तरफ इशारा किया। क्यों इसको सभी स्त्री और पुरुष, इस स्त्री और पुरुष को, पुरुषोत्तम को नमन करते हैं? तो देखो भूल गए हैं ना, जो इसको नमन करते हैं कौन? भक्ति मार्ग में राधा कृष्ण को या लक्ष्मी नारायण को, जो सतयुग के आदि के राजा थे, उनको सभी नमन करते हैं। क्यों नमन करते हैं? क्योंकि असली को भूल गए हैं ना। नमन तो करते हैं, पर ये कौन है, कब आए थे, कुछ भी नहीं जानते हैं, कोई भी जरा भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम ही सिर्फ इस सारी दुनिया में, उसमें भी दुनिया की तो बात छोड़ दो, बाकी भारत में क्या, हम ही भारत में, भारत माने जो ज्ञान की ही रोशनी में रत रहता था, दूसरा कोई धंधा था ही नहीं, उस भारत में रहते थे। हमारी मन बुद्धि किस में रमी रहती थी? हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा किसके अंदर धरी रहती थी? जैसे माँ की बुद्धि बच्चे में धरी रहती है, किसमें धरी रहती? बच्चे में। तो ऐसे ही जो भारतवासी हैं, कहाँ के वासी? भारतवासी। तो हम भारतवासियों की बुद्धि कहाँ धरी रहती? भारत में धरी रहती। पहले पहले हम ही हैं जिनकी बुद्धि भारत में धरी रहती, हमारे बाद फिर 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं नंबर बार आती है, जिनकी बुद्धि में, जिनकी मन बुद्धि में वो ही भारत जो सारी सृष्टि का हीरो है वो बैठ जाता है। महाविनाश के समय 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं किसको याद करेंगी? उसी एक को याद करेंगी। तो बाप ने समझाया है कि जो ये तुम्हारा भारत है, ये अविनाशी खंड है। कैसा खंड? अविनाशी खंड, जहां के तुम वासी हो, तुम्हारा, उनका नहीं दूसरे धर्म वालों का, इनका भी नहीं, किनका? ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों का, क्योंकि ये भी दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहते। तुम्हारा ये अविनाशी खंड है, और जो धर्म वाले हैं उनके धर्मखंड, जैसे बौद्धियों का धर्मखंड चीन जापान, क्रिश्चियन का धर्मखंड यूरोप अमेरिका, मुसलमानों का धर्मखंड अफ्रीका अरब देश, ईरान अफगानिस्तान वगैरह वगैरह, ये सब खंड विनाशी है। 2500 साल पहले न इनका कोई मनुष्य की बुद्धि में ज्ञान था, और अब जब एटम बम फटेंगे, ये 2500 वर्ष पूरे होंगे, तो ये धर्मखंड फिर सागर में डूब जाएंगे। ये विनाशी धर्मखंड है, क्योंकि अविनाशी जो बाप है बाप कैसा है हमारा अविनाशी जो बाप है उनकी ये जन्मभूमि है। अविनाशी जो बाप है मैं नहीं उनकी, अविनाशी जो बाप है उनकी ये भारत जन्मभूमि है। अविनाशी बाप कौन है? अविनाशी बाप जिसकी भारत खंड अविनाशी जन्मभूमि है। इस सृष्टि पर अविनाशी कौन है? और विनाशी कौन है? कितने विनाशी हैं और कितने अविनाशी हैं? साढ़े 4 लाख अविनाशी है। कृष्ण का जब जन्म होगा, कृष्ण के माँ बाप जब जन्म देंगे, तब 4.5 लाख मौजूद होंगे, है? होंगे? नहीं? वो तो जन्म, पहला जन्म जब पूरा होने को होगा तब ही तो आएंगे 4.5 लाख ऊपर से। नंबर बार आएंगे या एक साथ उतरेंगे? नंबर बार आएंगे। तो बताया जो नंबर बार आएंगे वो इस सृष्टि पर अविनाशी हैं, सदाकाल हैं इस सृष्टि पर। नहीं, एक है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल रहने वाला है, तो अविनाशी बाप की अविनाशी जन्मभूमि है। देखो तो कोई को भी ये बात मालूम नहीं है। गाते हैं शिव जयंती जन्मभूमि, क्या गाते हैं? हैं? शिव जयंती। अरे जयंती साकार की होती है या निराकार की होती है? तो कोई साकार होना चाहिए ना, हैं? प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाला साकार होना चाहिए या निराकार होना चाहिए? तो कौन है जिसकी सारे संसार में प्रत्यक्षता हो जाती है? अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, रेडियो के द्वारा, एक एक मनुष्य के मुख के द्वारा, जो कानों से सुने, जो इन आंखों से देखे, वो क्या कहे? मेरा बाप आ गया। तो प्रत्यक्षता होगी ना, तो जिसकी प्रत्यक्षता होगी वो साकार में होगा, या इन आंखों से न देखने वाला अव्यक्त निराकार आत्मा होगा, साकार होगा। गाते हैं शिव जयंती जन्मभूमि, क्या? कैसी भूमि? जन्मभूमि। किसकी जन्मभूमि है? परम पिता परमात्मा की जन्मभूमि। किसकी जन्मभूमि? परम पिता। कैसा पिता? जितने भी पिताएं हैं महंती महान, उन सब का पिता। क्या? धर्म पिता हैं महान थे महान, उन धर्म पिताओं का भी पिता परम पिता और परमात्मा। कैसी आत्मा? आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी आत्मा। परम पिता माने जो भी बाप हैं, उन बापों के बीच में जो भी पार्टधारी बाप हैं या पार्टधारी नहीं है, पार्टधारी बाप हैं जो साकारी मनुष्य सृष्टि के बाप हैं, उन बापों का भी बाप कौन? शिव बाप। वो पार्टधारी है, है? वो इस सृष्टि पर ऑलराउंड पार्ट बजाता है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अविनाशी पार्ट बजाता है। कौन? शिव तो बजाता ही नहीं, कौन बजाता है? हैं? मनुष्य सृष्टि का बाप है जो इस सृष्टि पर रंगमंच पर अविनाशी पार्ट बजाता है, पूरे 84 जन्म का पार्ट बजाता है। जो आत्माओं का बाप है 84 जन्म का अविनाशी पार्ट नहीं बजाता, जैसे इब्राहिम है 2500 वर्ष का पार्ट उसका कम हो जाएगा या नहीं कम हो जाएगा? इब्राहिम जो है इस्लाम धर्म का बाप, उसका कितना पार्ट कम हो जाएगा? 2500 साल का पार्ट कम हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इस सृष्टि पर उसका नाम निशान नहीं होगा। तो उसका पार्ट अविनाशी पार्ट हुआ नहीं हुआ? तो वो कौन है जिसका इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अविनाशी पार्ट है? पार्ट माने शरीर के द्वारा पार्ट बजाता है, उसकी जन्म भूमि है। अरे वो कौन है? है कौन है वो? शिव। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन? कौन है वो? शिव। इसका मतलब परमपिता परमात्मा, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, उसका ये जन्म है। किसका ये जन्म है? परमपिता, पिताओं के बीच में परमपिता। टैली किया, किससे टैली किया? धर्म पिताओं से टैली किया। शिव को टैली किया जा सकता है? नहीं कर सकते। क्यों नहीं टैली कर सकते? है? हाँ, कि वो सृष्टि पर सदाकाल कायम है ही नहीं। और परमात्मा किन आत्माओं से टैली किया? जो पार्टधारी आत्माएं हैं, उन पार्टधारी आत्माओं के बीच परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी परमात्मा, जिसके लिए गीता में भी कहा है सामान्य रूप से दो प्रकार की आत्मा है, एक क्षर क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, और एक है अक्षर, कभी क्षरित नहीं होती, पतित होती ही नहीं। कौन? वो शिव। वो है अक्षर, एक ही आत्मा, और बाकी जो भी जन्म के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं वो सब हैं क्षर, क्षरित होती रहती है। सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनती रहती है, सोलह कला संपूर्ण से कला कलाहीनता की ओर जाती है। लेकिन जो कलाहीनता की तरफ जाने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं में भी एक आत्मा है जो परम पार्टधारी है। 500-700 करोड़ पार्टधारी आत्माओं में परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी एक आत्मा है जिसको गीता में कहा गया है परमात्मा इति उदाहत है, उसको परमात्मा कहा जाता है। माना तीन प्रकार की आत्माओं का वर्णन है गीता में, एक क्षर एक अक्षर। जो क्षरित होने वाली हैं उनमें भी एक और है जो परमात्मा कही जाती है, यानी पार्टधारी आत्माओं में परम पार्टधारी आत्मा परमात्मा। इसीलिए परमात्मा शब्द बाद में और परमपिता पहले। परमपिता पहले क्यों? क्योंकि पिताओं के बीच में जो पिता है परम पार्टधारी पिता है, ऐसा पिता धर्म पिता जो अल्लाह वल्दीन कहा जाता है। क्या मुसलमान भी मानते हैं कि अल्लाह ने अव्वल नंबर धर्म की दीन की स्थापना की, तो वो अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला धर्म पिता साकार होगा या निराकार होगा? साकार है। लेकिन जो अव्वल नंबर धर्म का पिता बनता है उसका भी कोई बाप है या नहीं है? अव्वल नंबर जो धर्म पिता बनता है उसका नाम क्या है? सभी धर्म पिताओं का नाम है, उनके धर्म का भी नाम है। धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम है, बुद्ध के नाम पर बौद्ध, क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन, नाम है ना, मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम। तो ऐसे ही जो हमारा सत्य सनातन धर्म है उसका बाप है सनातन, माने पुराने ते पुराना, जिससे पुराना कोई धर्म, जिससे पुराना कोई धर्म पिता होता ही नहीं है, वो है परमात्मा। पतित पावन है, क्या है? पतितों को पावन बनाने वाला है। कैसे कैसे पतितों को पावन बनाने वाला है? है संघ के रंग से पतित से पावन बनाने वाला है। अगर संघ के रंग से आप समान बनाने वाला है तो शिव है, आत्माओं का बाप है या शिव बाबा है? संघ के रंग से पतितों को पावन बनाने वाला शिव आत्माओं का बाप है या शिव बाबा है? कौन है? शिव बाबा है। माने वो है जो साकार भी है और निराकार भी है। जो सिर्फ निराकार है, कभी साकार बनता ही नहीं, वो पतितों को पावन नहीं बना सकता। और जो उस निराकार के ऊपर ही श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करते हैं, उसी को मन बुद्धि से याद करते हैं, तो वो धर्म पिताएं जो सिर्फ निराकार को याद करते हैं वो निराकारी धाम में पड़े रहते हैं या साकारी सुखी सृष्टि में आते हैं? तो निराकारी वर्षा चाहिए? नहीं चाहिए। कैसा चाहिए? साकार सृष्टि में रहते हुए, साकार शरीर में रहते हुए सुख चाहिए, दुख दुख नहीं चाहिए। वो है सर्व का सदगति दाता। क्या क्या है? सर्व का सदगति दाता। सदगति माने सत, माने सच्ची, गति माने चाल। सदगति दाता सच्ची चाल का दाता है। सच्ची चाल क्या है? चाल माने गति। एक होता है पड़ा हुआ है, सो रहा है, सोते सोते पुरुषार्थ होता है? एक है उठ के बैठ गया, जैसे हम सवेरे को उठ के बैठ तो जाते हैं, बैठ जाते हैं ना, लेकिन बैठ जाते हैं आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण, उठ करके तुरंत हाथ मुंह धो करके नहीं बैठते, तो बैठ गए। अच्छे से याद आती है? नहीं आती। फिर बैठे हुए से भी ज्यादा अच्छा पुरुषार्थ है खड़ा, खड़ा होना। खड़े से भी ज्यादा अच्छा है चलता हुआ, चलते से भी ज्यादा अच्छा है क्या, दौड़ना, और दौड़ने से भी ज्यादा अच्छा है नहीं उड़ना, और उड़ने से भी ज्यादा अच्छा है हाई जंप लगाना। तो सर्व का सदगति दाता, सच्ची गति आत्मा की कब होगी? जब जब आत्मा हाई जंप लगाएगी, क्या दृढ़ता बुद्धि निर्धारण करेगी कि एक शिव बाबा दूसरा कोई, एक शिव बाबा जिसको हमने पहचान लिया है ये है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, और इसको याद करेंगे, इसका संग करेंगे, इसके नजदीक रहेंगे तो हम इसी जैसे बन जाएंगे। दूर रहेंगे तो दूर हो जाएंगे, या नजदीक रहेंगे तो नजदीक आ जाएंगे। मन बुद्धि से नजदीक हो गए तो नजदीक हो जाएंगे, और सिर्फ इंद्रियों से नजदीक हो गए, जैसे कुलटा स्त्री होती है पति के साथ रहती है और मन बुद्धि उल्टपने में लगी हुई है, तो पति के साथ है, नजदीक है या उससे दूर है? दूर हो गई। अगला जन्म दूर मिलेगा या उसके नजदीक मिलेगा? दूर मिलेगा। तो ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसे ही है। शिव बाप को जो बुद्धि से याद करते हैं, इंद्रियों से नजदीक भले कहीं दूसरे से हैं क्या, लेकिन बुद्धि से याद करते हैं एक को, जैसे महाकाली मंदिरों में देखा होगा, महाकाली के मंदिर में तीसरा नेत्र दिखाते हैं कि नहीं? जैसे शंकर को तीसरा नेत्र, वैसे महाकाली को भी तीसरा नेत्र, और मस्तक में शंकर रखा हुआ क्या, अंदर से किसको याद करती है? शंकर को। और शरीर काला है, शरीर कैसा है? काला है। कैसा काला? कि भगवान की सहयोगी भुजाओं को काट करके अपनी कमर की लज्जा बचा ली, अपनी कमर में जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं उन भ्रष्ट इंद्रियों के कुकर्मों की लज्जा को बचा लिया, कपड़ा बना दिया। तो देखो शरीर से भल पतित है, काले शरीर वाली है, गौरी नहीं कही जाती, महागौरी है या महाकाली? महाकाली। लेकिन बुद्धि से किसको याद करती है? शंकर को याद करती है। लेकिन ये इसका कारण क्या है कि वो इंद्रियों से तो भले विचारी बनती है, 500-700 करोड़ की माँ बनती है, 500-700 करोड़ को गोद में लेने वाली बनती है, जैसे दिल्ली, सब धर्मों ने उसे दिल्ली की गोद में राज किया, मनमाना राज किया, मनमाने तरीके से खून की नदियां बहाई, दिल्ली सारी दुनिया का दिल है, इसलिए बोला दिल्ली का सुधार, सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन, भारत का परिवर्तन। तो जो दिल्ली है वो ऐसी माता है, वो सबका दिल है, सभी दुनिया के धर्म वाले उस दिल्ली पर राज्य करने के लिए लालायित रहे हिस्ट्री में। और कोई दुनिया में ऐसा शहर नहीं है जहां इतनी बड़ी से बड़ी तादाद में सब धर्मों के लोग बसे हुए हों। क्या हिंदू भी वहां बहुत, तो मुसलमान भी बहुत, तो क्रिश्चियंस भी बहुत, तो सिख भी बहुत। वो दिल्ली महाकाली का रूप है, वो दिल्ली जगदम्बा का रूप है, सात्विक सतो प्रधान में जगदम्बा, तमो प्रधान में महाकाली। और वो महाकाली की अंदर बुद्धि में याद का राज क्या है? क्या राज है? हाँ, कि उसने जितना संघ का रंग लिया है परमपिता परमात्मा के प्रैक्टिकल पार्ट का, प्रैक्टिकल इंद्रियों से संघ का रंग लिया है, उतना और किसी ने संघ का रंग लिया ही नहीं। तो संघ के रंग की बलिहारी है ना, एक का संघ का रंग लिया, अनेकों का नहीं लिया, तो इतनी पावरफुल बन जाती है कि राज करेगा खालसा। खालसा माने पवित्र, मन बुद्धि से पवित्र रहने वाली वो आत्मा सारी दुनिया पर राज्य करेगी। क्या सारी दुनिया माने सारी दुनिया पतित बन जाती है अंत में कि नहीं? सारी दुनिया पतित बनती है, और सारी दुनिया जो पतित बनती है वो सब पतित दुनिया की मारकाट मचा करके अपने अंडर में कर लेती है। कोई गला नहीं काटती है, गला काटती है क्या? नहीं, गला नहीं काटती है, बाप से अनिश्चय बुद्धि बना करके मौत देती है। अनिश्चय बुद्धि माने मृत्यु, और अपना बच्चा बना लेती है। तो राज्य करेगी खालिस माने पवित्र, पवित्र ही राज्य करेगा। तो बताया इतना पुरुषोत्तम बनना है, उत्तम में उत्तम, जो कहा जाता है सर्व का सदगति दाता। सर्व माने है 500 करोड़ की सदगति करने वाला। पहले शरीर की सदगति करेगा या मन बुद्धि की सदगति करेगा? है मन बुद्धि की सदगति करेगा ना। मन बुद्धि की सदगति ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाकर करता है, या ज्ञान सुनने सुनाने को ज्ञान कहा जाता है, या समझने समझाने को ज्ञान कहा जाता है? तो ब्रह्मा के मुख से सुनना सुनाना हुआ या समझना समझाना भी हुआ? ब्रह्मा के मुख से ज्ञान दिया तो ब्रह्मा बाप को समझा? नहीं समझा। तो ब्रह्मा कुमारी भी बाप को नहीं समझ सकती। ऐसे ही जो एडवांस में है पढ़ाई पढ़ने में, उन एडवांस में आने वाले बच्चों में सभी धर्म के बीज हैं, या एक ही सूर्य वंश के बीज हैं, सभी धर्मों के बीज हैं, भांति भांति के छिलके चढ़े हुए हैं और धर्मों के, कोई में मोटा छिलका, कोई में पतला छिलका। तो जो मोटे छिलके वाले हैं और धर्म के, वो तो धर्मराज की जब तक सजाएं नहीं खाएंगे, उनका छिलका दंडों के सिवाय उतरने वाला नहीं। बाकी रहे सूर्यवंशी, वो सूर्यवंशी इसलिए हैं कि ज्ञान सागर के बच्चे हैं, रोशनी के बच्चे हैं, और वो रोशनी के बच्चे, सूर्य के बच्चे, चैतन्य सितारे अपनी रोशनी को सूर्य की रोशनी में तिरोहित कर देते हैं। दिन के सितारे खुद चमकते हैं या अपनी चमक को सूर्य में मिला देते हैं, है? मिला देते हैं। और रात के सितारे, चंद्रमा के सितारे खुद चमकते हैं, चंद्रमा को फीका कर देते हैं। ऐसे ही है ना प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल में ऐसे ही है। देखने में आता है कि जो सूर्यवंशी बच्चे हैं उनमें भी जो असल सूर्यवंशी हैं वो अपना नाम कहीं भी बाहर उजागर नहीं करते कि ये ज्ञान हमारा है। क्या उजागर करते? ये ज्ञान बाप का है। और जो उसमें दूसरे धर्म के बच्चे हैं वो अपने को प्रत्यक्ष जरूर करेंगे। तो देखो, जो असल सूर्यवंशी हैं उनकी यादगार आज भारत में चल रही है। कोई दुकान खोलेंगे, फर्म खोलेंगे, तो क्या लिखेंगे बोर्ड पर? क्या लिखेंगे? बाप का नाम लिखेंगे और आगे लिखेंगे एंड संस कंपनी। बच्चों का नाम नहीं लिखेंगे। बाप का नाम रोशन करते हैं, अपना नाम रोशन नहीं करते हैं। संसोर फादर, बच्चे वो हैं जो बाप का नाम बाला करें, जो अपना नाम बाला करें और बाप का नाम डुबो दे, ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज न रखे, वो बाप के बच्चे है ही नहीं। कैसे बच्चे हैं? चलो हम नहीं मानते, हमें जानने की जरूरत ही नहीं किसके बच्चे हैं, वो जाने उनका काम जाने। लेकिन जो बाप के असल बच्चे हैं वो असल बच्चे अपने को कभी प्रत्यक्ष नहीं करते हैं, गुप्त राजधानी स्थापन करते हैं। कितने निकलेंगे? है? हाँ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बच्चे जिनका संगठन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजधानी रूपी संगठन बनाएगा। कैसा संगठन? 100% श्रेष्ठ राजधानी। वो बच्चे संसार में गुप्त होंगे या सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे? गुप्त राजधानी होगी, गुप्त बच्चे होंगे। ओम शांति।